आगे सबक देखिए भाई। सुम खियारुल बिक्री यबतुलु बिस्सुकूति वला यबतुलु खियारुल गुलामी मालम यकुल रज़ीतु औ यजिअ मिन्हु मा युअलमु अन्नहु रिज़ा وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتبارا لهذه الحالة بحال ابتداء النكاح। गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने विलायत इल्जाम के बारे में बयान फरमाया था कि बाप और दादा इनको विलायत इल्जाम हासिल है, लिहाजा ये सगीर या सगीरा का निकाह करवा दें तो फिर वो निकाह लाजिम हो गया। अब वो बालिग होने के बाद भी उसको फसख नहीं कर सकते, जबकि बाप और दादा के अलावा और अवलिया जो हैं अगर वो निकाह करवाएंगे तो फिर सगीर और सगीरा को खियार बुलूग मिलेगा, यानी बालिग होने के बाद इनको इख्तियार होगा कि वो चाहें तो उस निकाह को फसख कर दें भाई। और मैंने ये भी बतलाया था कि बाप और दादा वो चाहे अपने बराबर के लोगों में रिश्ता करवाएं सगीर या सगीरा का, या अपने से कमतर लोगों में करवाएं, और चाहे सगीरा का जितना महर होना चाहिए था उतना ही महर में निकाह करवाएं या उससे बहुत कम महर के अंदर निकाह करवाएं। और इसी तरह सगीर का बाप और दादा ने निकाह करवाया और महर जो है उसकी बीवी का महर बहुत ज्यादा मुकर्रर कर दिया तो भी ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा और सगीर और सगीरा को बालिग होने के बाद कोई इख्तियार नहीं। जबकि इसके मुकाबले में दीगर अवलिया अगर निकाह करवाएंगे तो एक तो खियार बुलूग मिलेगा इस सगीर और सगीरा को बालिग होने पर, और नीस अगर ये जो दीगर अवलिया हैं इन्होंने अपने हमपल्ला लोगों में निकाह नहीं करवाया बल्कि अपने से कमतर लोगों में निकाह करवाया है, या सगीरा का महर बहुत कम मुकरर किया या सगीर की बीवी का महर बहुत ज्यादा मुकरर कर दिया, तो इन तमाम सूरतों में वो निकाह ही मुनाकिद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो बाप और दादा के अलावा कोई और निकाह करवाएगा तो सगीर या सगीरा को खियार बुलूग हासिल होगा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि नहीं, चाहे सगीर या सगीरा का निकाह बाप या दादा करवाएं या कोई और वली, इनको कोई खियार नहीं मिलेगा, वो खियार बुलूग के कायल नहीं है भाई। जबकि तरफेन कायल हैं खियार बुलूग के, वो फरमाते हैं कि बाप और दादा की शफकत तो कामिल है लेकिन इनके अलावा बाकी जो असबात हैं उनकी शफकत कामिल नहीं, तो हो सकता है वो जहां निकाह करवाएं तो निकाह के मकासिद पूरी तरह हासिल ना हो सके, उसमें खलल आ जाए भाई, लिहाजा इसकी तलाफी का तरीका होना चाहिए। और वो तलाफी फिर क्या है कि सगीर और सगीरा को खियार बुलूग दे दिया जाए। और फिर मैंने ये भी बतलाया था कि अगर आसाबात में से कोई ना हो तो फिर जो बाकी रिश्तेदार हैं यानी जवील अरहाम उनको निकाह का इख्तियार मिलता है और उनमें मां का दर्जा सबसे पहले है, तो मां को भी सगीर और सगीरा पर विलायत इजबार हासिल होगी जब आसाबात न हो। और अगर मां भी जिंदा नहीं है तो फिर दादी को विलायत इजबार होगा, उसके बाद नानी को, फिर नाना को, फिर उसके बाद हकीकी बहन और फिर अल्लाती बहन जो है उनको विलायत इजबार मिलेगी भाई। और अगर आसाबात में से भी कोई ना हो और जवील अरहाम में से भी कोई ना हो तो फिर काजी को विलायत इजबार हासिल होगी, लेकिन ये उस वक्त है जब काजी को खलीफा ने बादशाह ने इजाजत दी हो कि वो यतीमों का निकाह करवा सकता है। और फिर बतलाया था साहिब हिदाया ने कि ये जैसे खियार बुलूग जो है इसके अंदर सगीर और सगीरा को बालिग होने पर निकाह फसख करने का इख्तियार मिलता है, इसी तरह एक खियार इत्क भी है कि बांदी को जब आजाद कर दिया जाए और उसका आका ने कहीं निकाह करवाया हुआ था, और हमारे यहां तलाक का एतबार औरतों पर होता है, तो अगर बांदी हो तो खावन दो तलाकों का मालिक होगा और अगर आजाद होगी तो खावन तीन तलाकों का मालिक होगा। अब ये बांदी है, इसका निकाह कहीं पर हो चुका है और आका ने इसको आजाद कर दिया, तो अब इसकी तलाकें दो से बढ़कर तीन हो जाएंगी, लिहाजा चूंकि इसके ऊपर मिल्कियत खावंद की बढ़ रही है, इसको नुकसान हो रहा है, लिहाजा शरीयत ने इसको खियार इत्क दिया है कि जिस मजलिस में आका इसको आजाद करे उसी मजलिस के अंदर यह अपने इस निकाह को फसख कर सकती है। तो खियार बुलूग में भी फस्ख निकाह का इख्तियार होता है और खियार इत्क में भी फस्ख निकाह का इख्तियार होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। खियार बुलूग के अंदर जो फस्ख निकाह है उसको इल्जाम अलल गैर शुमार किया जाता है, लिहाजा वहां कजाए काजी जरूरी है, और खियार इत्क के अंदर जो फस्ख निकाह है उसको दफ़े जरर शुमार किया जाता है, लिहाजा वहां कज़ाए काजी की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप से नुकसान को दूर करना यह हर इंसान का इख्तियार है, इसमें किसी काजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था दोनों के अंदर दोनों पहलू हैं, खियार बुलूग के अंदर भी दफ़े जरर का भी पहलू है और इल्जाम अलल गैर का भी, और इसी तरह खियार इत्क के अंदर भी दफ़े जरर वाला पहलू भी है और इल्जाम अलल गैर वाला पहलू भी है। वजह यह कि जब निकाह को फसख किया जाएगा तो यह फसख सिर्फ इस फसख करने वाले पर नाफिज नहीं होगा, बल्कि वो जो दूसरा है यानी अगर सगीरा है तो इसका जो खावंद है उस पर भी नाफिज हो जाएगा, या सगीर जो है अगर वो फसख कर रहा है बालिग होने पर तो उसकी जो बीवी है उस पर भी फसख नाफिज होगा। तो लिहाजा इसके अंदर इल्जाम अलल गैर भी है, लेकिन खियार बुलूग को हमने इल्जाम अलल गैर शुमार किया। वजह यह कि खियार बुलूग के अंदर जो दफ़े जरर हो रहा है वो जरर खफी है, वो जरर जाहिर नहीं, एहतमाल है हो सकता है अच्छी जगह रिश्ता न करवाया हो, तो वहां दफ़े जरर खफी है, लिहाजा उसका हमने एतबार नहीं किया। अलबत्ता इल्जाम अलल गैर तो जाहिर है तो उसका हमने एतबार कर लिया, और जबकि बांदी जो खियार इत्क इस्तेमाल कर रही है वहां पर वो जाहिरी नुकसान को अपने आप से दूर कर रही है, वहां तो यकीनी नुकसान आ रहा है कि उसकी तलाकें दो से बढ़कर तीन हो रही हैं, तो लिहाजा वहां हमने दफ़े जरर का एतबार किया और इल्जाम अलल गैर का एतबार नहीं किया भाई, क्योंकि अगर हम दफ़े जरर का एतबार नहीं करेंगे तो इसको तो नुकसान लाजिम हो जाएगा भाई, इसकी तलाकें दो से बढ़कर तीन हो जाएंगी भाई। और फिर उसके बाद यह भी बतलाया साहिब हिदाया ने आपको कि सगीर या सगीरा अगर बालिग हुए और उनको निकाह का इलम ही नहीं था कि उनका निकाह करवाया हुआ है उनके वली ने, तो फिर जब इलम होगा तो इनको खियार बुलूग मिल जाएगा, लिहाजा मालूम हुआ निकाह से ला इल्मी उजर है। लेकिन अगर इनको यही पता नहीं है कि शरीयत ने उनको खियार बुलूग दिया हुआ है तो फिर ये खियार बुलूग से ला इल्मी ये उजर नहीं है, ये उजर नहीं है। वजह यह कि ये सगीर और सगीरा ये तो आजाद हैं भाई, और इनके पास तहसील इलम के मौके मौजूद हैं, और नीज बांदी या गुलाम जो होते हैं वो तो अपने आका की खिदमत में मसरूफ होते हैं, ये तो खिदमत में भी मसरूफ नहीं, और नीज ये दारुल इस्लाम है और दारुल इस्लाम दारुल इल्म होता है, वहां इलम के मौके मौजूद होते हैं, इलम के असबाब मौजूद होते हैं, और नीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, के इलम का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, लिहाजा इन पर जरूरी था कि ये अहकाम शरीयत को सीखते, कम अज कम जरूरी अहकाम का सीखना तो हर मर्द और औरत पर फर्ज है भाई। तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल मुस्लिमीन, यानी जरूरी शरई अहकाम जिनकी एक इंसान को जरूरत पेश आती है उनका सीखना तो इन पर फर्ज था, तो ये इनकी तरफ से कोताही है कि इन्होंने खियार बुलूग के अहकाम को नहीं जाना, इन्होंने तालीम हासिल नहीं की और इनको खियार बुलूग का इलम नहीं था, लिहाजा अब ये उजर शुमार नहीं होगा, कसूर इनका अपना है। बाद में इनको कुछ मुद्दत के बाद पता चला कि खियार बुलूग भी होता है तो अब इनको खियार बुलूग नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर ला इल्मी उजर नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। जबकि इसके मुकाबले में बांदी अगर खियार इत्क से ला इलम है तो वो उजर है भाई, वो उजर है। वजह यह कि बांदी जो है वो तो अपने आका की खिदमत में मसरूफ रहती है, उसके पास तो तालीम हासिल करने का मौका नहीं होता, लिहाजा बांदी की ला इल्मी उजर है खियार इत्क से, जबकि सगीर और सगीरा की ला इल्मी खियार बुलूग से ये उजर नहीं है भाई। यहां एक इश्काल होता है। इश्काल यह होता है कि सगीर या सगीरा यानी नाबालिग जो बच्चे होते हैं वो तो मुकल्लफ नहीं, उन पर तो शरिया अहकाम लागू नहीं होते, लेकिन आपकी तकरीर से यह लाजिम आया कि मालूम हुआ सगीर या सगीरा पर भी तालीम वाजिब थी, जरूरी शरिया अहकाम को सीखना इन पर वाजिब था। यह तो आपने बच्चों को भी मुकल्लफ बना दिया, हालांकि बच्चे तो मुकल्लफ नहीं होते। तो जवाब याद रखना, उलमा फरमाते हैं कि जब सगीर या सगीरा बुलूगत के करीब पहुंच जाए तो अब इन पर जरूरी शरई मसाइल का सीखना वाजिब हो जाता है, या इनका जो वली है उस पर वाजिब हो जाता है कि इनको तालीम दे जरूरी मसाइल की। भाई चुनांचे इसीलिए हदीस में आता है कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में उनकी पिटाई करो, यानी अगर नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। तो देखो नमाज का हुक्म देने का कहा गया और नमाज के छोड़ने पर पिटाई करने का हुक्म दिया गया, तो मालूम हुआ इन पर यह नमाज और दीगर जरूरी मसाइल का सीखना लाजिम हो जाता है बालिग होने से पहले ही। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं सुम खियारुल बिक्री अब तुलु बिसुकूती वला अब तुलु खियारुल गुलामी मालम यकुल रजी तो औ यजिमिन हुमा युअलमु अन्नहु रिज़न वकदालिकल जारियतु इदा दखल बिहा ज़ौजु क़ब्लल बुलूग। भाई वही खियार बुलूग के अहकाम की तफसील बयान फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। याद रखो ये जिनको खियार बुलूग मिलता है ये 3 किस्म के अफराद हो सकते हैं, या जिसका निकाह करवाया गया है वो सगीर था यानी लड़का था अब बालिग हुआ, या वो सगीरा थी अब बालिगा हुई। लेकिन सगीरा में तो 2 सूरतें मुमकिन हैं, या वो सगीरा बाकेरा होगी या वो सगीरा सैयबा होगी, यानी खावंद इसके साथ बालिग होने से पहले ही सोहबत कर चुका है। तो गोया 3 किस्म के अफराद हो गए जिनको खियार बुलूग मिलता है, एक बाकेरा है, एक सैयबा है और एक लड़का है। भाई तो ये 3 किस्म के अफराद हैं जिनको खियार बुलूग मिल सकता है, यानी सगीर और सगीरा सैयबा और सगीरा बाकेरा। इन तीनों के इब्तिदाई निकाह के अंदर इनकी हालत देख लो, जो वहां इनका हुक्म था यहां पर भी उनका वही हुक्म होगा, यानी इनका खियार बुलूग कब तक रहेगा और कब इनका खियार बुलूग जो है वो बातिल हो जाएगा, तो इनकी इब्तिदाई निकाह की हालत देख लीजिए। इब्तिदाई निकाह जब ये तीनों बालिग हों, मसलन बाकेरा बालिगा हो या सैयबा बालिगा हो या लड़का बालिग हो, आप जानते हैं कि बालिग पर किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं होती, वली जबरदस्ती इनका निकाह जहां चाहे नहीं करवा सकता बल्कि इनसे इजाजत लेना पड़ेगी। अब इनसे इजाजत का क्या तरीका है, आपको साहिब हिदाया ने बतलाया था कि अगर वो बालिगा जो है वो बाकेरा है तो उसकी खामोशी भी रजामंदी की अलामत है। वली उसका निकाह करवाना चाहता है और उससे जाकर पूछता है कि मैं फलां जगह फलां शख्स से तुम्हारा निकाह करवाना चाह रहा हूं, क्या तुम्हारी तरफ से इजाजत है, तो बाकेरा बालिगा खामोश रही तो यह खामोशी भी रजामंदी की अलामत है। जबकि सैयबा बालिगा और जो लड़का है उनका जुबान से इजाजत देना जरूरी है, उनकी खामोशी रजामंदी की अलामत नहीं। तवज्जो है, मैं निकाह की बात कर रहा हूं, ये खियारे बुलूग के मसले को जरा छोड़ दें, निकाह के मसले में वली इनका निकाह करवाना चाहता है तीनों से इजाजत लेना पड़ेगी, लेकिन बाकेरा बालिगा के अंदर इजाजत लेते हुए अगर वो खामोश भी रही तो ये खामोशी रजामंदी की अलामत है। जबकि सैयबा बालिगा या वो जो लड़का बालिग है इनसे जब वली इजाजत लेने गया तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत नहीं है बल्कि इनका बाकायदा जुबान से इजाजत देना जरूरी है। भाई इसी तरह यहां पर भी जब ये बालिग होंगे तो वही अहवाल यहां भी जारी होंगे। इब्तिदाए निकाह के मौका पर ये इन तीनों के जो अहवाल थे वही अहवाल यहां पर खियारे बुलूग के मौका पर भी जारी होंगे। तो अब देखो एक एक की हालत देखते जाएं, इब्तिदाए निकाह को भी और यहां पर भी। अब बाकेरा जो है वो बालिग हुई तो इसको खियारे बुलूग मिलेगा, तो इसको फौरन ऐलान करना पड़ेगा कि मैं इस निकाह को फसख करती हूं या मैं इस निकाह को रद्द करती हूं। वजह यह कि अगर इसने कुछ देर भी गुजार दी तो खामोशी पाई गई और बाकिरा की खामोशी रजामंदी की अलामत होती थी। जब वली उसे निकाह की इजाजत लेने आता था तो उसकी खामोशी रजामंदी की अलामत समझी जाती थी। तो यहां पर भी जब इसको खियार बुलूग मिला तो इसको फौरन उस खियार को इस्तेमाल करते हुए निकाह को रद्द करना पड़ेगा। अगर यह थोड़ी देर भी खामोश रही तो खामोशी पाई गई और बाकिरा की खामोशी तो रजामंदी की अलामत होती है, लिहाजा यह निकाह इस पर लाजिम हो जाएगा। अब यह काजी के पास जाकर भी तफरीक नहीं करवा सकती भाई। जबकि इसके मुकाबले में जब सैयबा बालिग हुई तो सैयबा बालिगा से जब वली निकाह की इजाजत लेता था तो जुबान से उसका कहना जरूरी होता था। इसी तरह लड़का बालिग हो तो वली उसका निकाह करवाना चाहे तो जुबान से लड़के की इजाजत जरूरी है। लिहाजा ये जो सैयबा बालिग हुई या ये जो लड़का बालिग हुआ इनको खियार बुलूग मिलेगा लेकिन इनका खियार बुलूग खामोश रहने से बातिल नहीं होगा। ये जब तक जुबान से ये नहीं कह देंगे कि हम इस निकाह पर राजी हैं तब तक इनको खियार बुलूग रहेगा भाई। या कोई ऐसा अमल कर दें जिससे रजामंदी का इजहार हो जाए, जो रजामंदी पर दलालत कर दे। मसलन लड़का बालिग हो गया, अब इसको खियार बुलूग शरीयत ने दे दिया, ये अपनी उस बीवी को महर भिजवा देता है तो मालूम हुआ ये इस निकाह पर राजी है, अब इसका खियार बुलूग खत्म हुआ। या ये उस बीवी से सोहबत कर लेता है या उसका बोसा ले लेता है, मालूम हुआ वो इस निकाह पर राजी है, लिहाजा अब उसका खियार बुलूग बातिल हो गया। जबकि इसी तरह सैयबा जब बालिग हो गई तो उसके लिए भी जुबान से इजाजत वो देगी, फिर ही उसका खियार बुलूग साकित होगा भाई। और वो जुबान से इजाजत दे दे या कोई ऐसा अमल कर दे जो दलालत करे इसकी रजामंदी पर, मसलन लड़के ने इसको महर भिजवाया था, इसने वो महर कबूल कर लिया, लेकर रख लिया, मालूम हुआ कि ये उस निकाह पर राजी है, तो फिर खियार बुलूग खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या कि खियार बुलूग तीन किस्म के अफराद को मिलता है, या वो बाकिरा होगी या सैयबा होगी या लड़का होगा। बाकिरा को खियार बुलूग मिला है तो वो थोड़ी देर भी खामोश रही तो उसकी खामोशी रजामंदी की अलामत है, लिहाजा अब उसका खियार बुलूग बातिल, निकाह लाजिम हो गया, अब काजी के पास जाकर भी जुदाई नहीं करवा सकती। और सैयबा जब बालिग हुई तो उसको खियार बुलूग मिलेगा लेकिन उसका जुबान से इजाजत देना जरूरी है, या कोई ऐसा फेल करे जो रजामंदी पर दलालत करे, फिर खियार बुलूग बातिल होगा, वैसे बातिल नहीं। इसी तरह लड़का बालिग हुआ है तो उसका भी खियार बुलूग बाकी रहेगा जब तक वो जुबान से इजाजत ना दे दे या कोई ऐसा फेल ना कर ले जो रजामंदी पर दलालत कर रहा हो। देखिए भाई, कहते हैं सुम खियार उल बिक्री अब तुलु बिसुकूती, फिर बाकिरा का खियार जो है वो बातिल हो जाता है खामोश रहने से। वला अब तुलु खियार उल गुलामी, और लड़के का खियार बातिल नहीं होता। गुलाम याद रखो, गुलाम को भी कहते हैं और लड़के को भी कहते हैं अरबी जुबान में, तो यहां गुलाम बमाने लड़के के है। वला अब तुलु खियार उल गुलामी, और लड़के का खियार जो है वो बातिल नहीं होगा। मालम यकुल रजी तु, जब तक वो ये न कह दे रजी तु के मैं राजी हूं। औ यजी अमीन हूं, यजी का आतफ है यकुल पर, और यकुल मजजूम है, उस पर लम दाखिल है तो यजी इसको भी मजजूम पढ़ेंगे। मालम यकुल रजी तु, जब तक वो ये ना कह दे मैं राजी हूं। औ यजी अमीन हूं, आई मालम यजी अमीन हूं, या जब तक उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज ना आ जाए। मा युअलम अन्नहु रिज़न, जिससे यह मालूम हो जाए कि यह रजामंदी है। मसलन महर भिजवा दिया या सोहबत कर ली तो यह सब रजामंदी की अलामतें हैं। वह कदालिकल जारिया तो इदा दखल अभी हज कबल बुलूगी, और इसी तरह जारिया है, जारिया भी याद रखो बांदी को भी अरबी जुबान में कहते हैं और लड़की को भी, तो यहां यह लड़की के माने में है। वह कदालिकल जारिया तो, और इसी तरह वो लड़की है। इदा दखल अभी हज कबल बुलूगी, जब खामन ने इसे सोहबत कर ली बालिग होने से पहले ही। वली ने सगीरा का निकाह करवाया था किसी शख्स से, उसने इसके बालिग होने से पहले ही इसके साथ सोहबत कर ली, तो ये सगीरा सैयबा हो गई भाई। अब ये सगीरा सैयबा जब बालिग होगी तो इसको खियार बुलूग मिलेगा भाई, और इसका खियार बुलूग जब तक जुबान से इजाजत नहीं देगी या अपने किसी अमल से इजाजत नहीं देगी तब तक इसको ये खियार रहेगा भाई। ये माना है वकदालिकल जारियतु, और इसी तरह लड़की भी है यानी सैयबा, इदा दखला बिहा ज़ौजु क़ब्ल अल बुलूग़, जब सोहबत कर ली इसके साथ खामन ने बालिग होने से पहले, एतबारन लिहादिही हालति बिहाल इब्तिदा इन निकाही, कियास करते हुए इस हालत को इब्तिदाई निकाह की हालत पर, यानी ये बाकिरा लड़का और ये जो सैयबा है, तीनों की इस हालत को कियास किया जाएगा इब्तिदाए निकाह की हालत पर। तो कहते हैं अतिबारन लिहादिही हालति बिहाल इब्तिदा इन निकाही, कियास करते हुए इस हालत को इब्तिदाए निकाह की हालत पर, व खियारुल बुलूग फी हक्किल बिक्री ला यमतद्दु इला आखिरिल मजलिस वला यबतुलु बिल कियाम फी हक्कि सय्यिब वल गुलाम। भाई यहां एक और कीमती बात याद रखना कि जो इख्तियार किसी इंसान की तरफ से दूसरे इंसान को मिले वो इख्तियार मजलिस तक रहता है, जब मजलिस खत्म होगी वो इख्तियार भी खत्म हो गया। मसलन आप किसी के साथ बैअ कर रहे हैं तो जो पहले कॉल करे उसको कहते हैं ईजाब और दूसरा जो कॉल करे उसको कहते हैं कबूल। अब आपने ईजाब कर लिया दूसरे से कि मैंने ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में फरोख्त कर दी, तो अब उस दूसरे को कबूल का इख्तियार मिल गया, वो चाहे कबूल करे चाहे कबूल न करे। और याद रखो ये इख्तियार उसको ईजाब करने वाले ने दिया है, लिहाजा ये इख्तियार मजलिस तक रहेगा। जब तक ये मजलिस है वो कबूल कर सकता है, अगर मजलिस बदल गई तो फिर इस सूरत में उसका ये खियार कबूल बातिल हो जाएगा। बाद में ये आकर कहता है कि मुझे बया कबूल है, नहीं भाई अब बया नहीं हो सकती, कबूल करना था तो उसी मजलिस में करना था भाई। और फिर ये भी याद रखना कि मजलिस का ये मतलब नहीं है जब तक वहां बैठे हुए हैं तब तक वो मुखियार रहेगा, बल्कि बल्कि कोई भी ऐसा काम दरमियान में पाया गया जिसने एराज पर दलालत कर दी कि वो इस इख्तियार से मुंह मोड़ रहा है, वो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो इस सूरत में उसका इख्तियार खत्म हो जाएगा। मसलन मसलन आपने दूसरे के साथ ईजाब किया कि मैंने 10 लाख रुपए में ये गाड़ी आपके हाथ फरोख्त कर दी और उसने और मौजूआत पर गुफ्तगू शुरू कर दी, इधर उधर की बातें करने लग पड़ा, मालूम हुआ वो कबूल नहीं करना चाहता, ये उसका इधर उधर की बातें करना ये एराज पर दलालत कर रहा है। या वो खड़ा हो गया, भाई खड़ा होना भी एराज पर दलालत कर रहा है, मालूम हुआ वो कबूल नहीं करना चाहता। इसी तरह है खावन ने मसलन अपनी बीवी को इख्तियार दे दिया कि तुम्हें इख्तियार है, तुम मुझसे जुदा होना चाहती हो तो जुदा हो सकती हो, तो मैं तुम्हें जुदाई का इख्तियार देता हूं। तो देखो ये इख्तियार खावंद ने यानी एक इंसान ने दिया है, तो ये इख्तियार बीवी को मजलिस तक रहेगा, वो जब तक वहां बैठी है वो अपने आप को खावंद से जुदा कर सकती है और अपने आप को तलाक दे सकती है, क्योंकि खावंद ने ये उसको इख्तियार दे दिया है भाई। लेकिन यह मजलिस तक है, अब अगर वो बीवी खड़ी हो गई मालूम हुआ वो इससे एराज कर रही है, मजलिस ही बदल गई खड़ी हो गई, या उसने और मौजूआत पर गुफ्तगू शुरू कर दी मालूम हुआ उसको खावंद की यह बात पसंद नहीं आई। तो बात चल रही थी कि इंसान की तरफ से जो इख्तियार मिलता है वो मजलिस तक रहता है, मजलिस के बाद नहीं। खियार कबूल भी मजलिस तक है, मजलिस के बाद नहीं। बीवी को जुदाई का इख्तियार दिया यह भी मजलिस तक है, मजलिस के बाद नहीं। इसी तरह खियार इत्क जो है, खियार इत्क जो बांदी को मिला है, आका ने उसको आजाद किया और इस आजादी की वजह से उसको खियार इत्क मिला है, तो यूं समझो गोया ये खियार इत्क भी आका ने ही दिया है। बांदी को खियार इत्क क्यों मिला? आजादी की वजह से। और ये आजादी किसने दी है? आका ने दी है, तो गोया ये खियार इत्क भी किसने दिया? आका ने दिया है। और इंसान की तरफ से जो खियार मिले वो मजलिस तक रहता है, लिहाजा बांदी के लिए जरूरी है कि जिस मजलिस में उसको आजादी की इत्तला मिली है उसी मजलिस के अंदर खियार इत्क को इस्तेमाल करे, अगर नहीं करेगी उसका खियार बातिल हो जाएगा, बाद में वो निकाह को फसख नहीं कर सकती। हां अगर उसको इलम ही नहीं था कि उसे खियार इत्क हासिल हुआ है फिर तो अलग बात है, फिर जिस मजलिस में उसको इलम होगा कि मुझे खियार इत्क शरीयत ने दिया है इस मामले में आजादी के बाद, तो उस मजलिस के इख्तिताम तक उसको खियार इत्क रहेगा भाई। बात समझ में आ गई? जबकि ये सगीर और सगीरा जो हैं इनको भी बालिग होने पर खियार बुलूग मिलता है, लेकिन ये खियार बुलूग इनको किसी इंसान ने नहीं दिया, शरीयत ने दिया है। इंसान जो खियार देता था वो तो मजलिस तक रहता था, लेकिन शरीयत जो इख्तियार देगी वो मजलिस तक नहीं रहेगा, वो मजलिस के बाद भी बाकी रहेगा, यहां तक कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो इसको बातिल कर दे। यानी इजाजत आ गई, जब इजाजत आ गई मालूम हो वो इस खियार को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो निकाह की इजाजत दे रहे हैं, तो ये खियार बुलूग बातिल हो जाएगा। हासिल कलाम क्या कि खियार बुलूग मजलिस तक नहीं रहेगा, मजलिस के बाद भी रहेगा। लिहाजा सगीर जब बालिग हो गया या सैयबा जब बालिगा हो गई, तो जब तक इनकी तरफ से इजाजत का ऐलान नहीं हो जाता, चाहे अल्फाज के जरिए हो चाहे दलालत के जरिए रजामंदी का इजहार हो, तब तक इनको खियार बुलूग रहेगा। भाई चाहे 5 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, इनको ये खियार रहेगा भाई, जब तक इनकी तरफ से इजाजत न आ जाए। बात समझ में आ गई? या उसको वो रद्द कर दें, जब रद्द कर दिया फिर तो उन्होंने अपने खियार को इस्तेमाल कर लिया बाकायदा। बात समझ में आ गई? उनको रद्द करने ही का तो इख्तियार दिया था शरीयत ने। जबकि बाकेरा जब बालिगा होती है, वो जिस मजलिस में बालिग हुई उसी मजलिस में उसको ये इख्तियार इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर वो थोड़ी देर भी खामोश रही तो उसकी खामोशी तो रजामंदी की अलामत है, मालूम हो वो इस निकाह पर राजी है। जब वो निकाह पर राजी है तो उसकी तरफ से इजाजत आ गई, इजाजत आ गई तो खियार बुलूग बातिल हुआ। तो बाकेरा थोड़ी देर भी खामोश रही तो उसका खियार बुलूग बातिल हो जाएगा। इस पर इश्काल फिर होता है कि आपने हमें कहा जो इख्तियार शरीयत की तरफ से मिलता है वो मजलिस तक नहीं रहेगा, वो मजलिस के बाद भी बाकी रहेगा। चुनांचे इसीलिए लड़का जब बालिग हुआ या सैयबा बालिग हुई तो मजलिस के बाद भी उनके पास इख्तियार रहता है। लेकिन बाकिरा के मामले में आप कहते हैं कि थोड़ी देर खामोश रही तो उसका खियार बुलूग बातिल हो गया। तो जवाब यह कि बाकिरा को जो इख्तियार दिया था शरीयत ने वो भी मजलिस तक नहीं था, मजलिस के बाद भी इसने रहना था, लेकिन यह खियार कब बातिल होता है? जब इजाजत आ जाए। जब वो आदमी इजाजत दे दे तो खियार बुलूग बातिल हो जाता है। तो यहां भी जब ये बाकिरा थोड़ी देर खामोश रही तो इसकी थोड़ी देर खामोशी इसने किस पर दलालत कर दी? रजामंदी पर। तो गोया इसकी तरफ से इजाजत आ गई, रजामंदी आ गई, इसलिए इसका खियार बुलूग बातिल हुआ है। यह नहीं कि इसका खियार बुलूग में इम्तिदाद नहीं था, वो लंबा नहीं था, नहीं नहीं, वो लंबा था, वो मजलिस के बाद भी रहता, लेकिन चूंकि रजामंदी वाली एक चीज आ गई तो लिहाजा इसलिए अब उसको खियार बुलूग हासिल नहीं रहेगा। भाई देखिए, भाई कहते हैं वखियार उल बुलूग फी हक इल बिक्री ला यमतद्दू इला आखिर इल मजलिसी। इमतद्दा यमतद्दू के माने है लंबा होना। वखियार उल बुलूग फी हक इल बिक्री, और बाकिरा के हक में खियार बुलूग जो है ला यमतद्दू इला आखिर इल मजलिसी, ये मजलिस के आखिर तक लंबा नहीं होगा। वला बात समझ में आ गई? क्यों नहीं मजलिस के आखिर तक लंबा होगा? क्योंकि खामोशी जो है वो खामोशी रजामंदी की दलील आ जाएगी। भाई वला यब्तुलु बिल कियामी फी हक सैयब वल गुलामी, और ये जो खियार बुलूग है सैयबा के हक में और लड़के के हक में मजलिस से उठने से बातिल नहीं होगा, यानी मजलिस तक ये इख्तियार नहीं रहेगा, बाद में भी रहेगा। लिअन्नहुमा सबता भी इस बात ज़ौजी, इसलिए क्योंकि ये खियार जो है खावंद के साबित करने से साबित नहीं हुआ। सैयबा को जो इख्तियार मिला है वो कोई खावंद ने नहीं दिया कि मजलिस तक रहे, बल्कि शरीयत ने दिया है। बल लितवहमिल खलली, बल्कि जो खियार साबित हुआ है वो खलल के वहम की वजह से है कि शायद वली ने जो निकाह करवाया उसमें निकाह की मसलहतें पूरी हासिल ना हुई हों, लिहाजा इस खलल के वहम की वजह से हासिल हुआ है। फइन नमा यब्तुलु बिर्रिजा, तो ये जो खियार बुलूग है ये रजामंदी से ही बातिल होगा, वैसे बातिल नहीं होगा। बात समझ में? भाई रजामंदी को बार बार जिक्र कर रहे हैं, रद्द को नहीं जिक्र कर रहे कि रजामंदी से बातिल होगा, ये नहीं कह रहे रद्द से बातिल होगा। वजह यह कि जब रद्द कर देंगे फिर तो खियार इस्तेमाल कर लिया, फिर तो बातिल उसको नहीं किया भाई, इसलिए रजामंदी को जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं फइन नमा यब्तुलु बिर्रिजाए, कि ये खियार जो है रजामंदी से ही बातिल होगा। गैर अन्न सुकूत अलबिक्री रिजान, इलावा इसके कि बाकिरा की खामोशी भी रजामंदी है। बिखिलाफ खियार इत्क, बिखिलाफ खियार इत्क के जो बांदी को मिलता है, वो मैंने बताया वो किसकी, क्यों बांदी को खियार इत्क क्यों मिला? आजादी की वजह से, और आजादी किसने दी है? आका ने दी है, तो गोया खियार इत्क भी किसने दिया, आका ने दिया है, लिहाजा वो मजलिस तक रहेगा। तो कहते हैं बिखिलाफ खियार इत्क, बखिलाफ खियार इत्क के, लिअन्नहु सबत बि इस्बात अल-मौला, इसलिए क्योंकि वो आका के साबित करने से साबित हुआ है, वह हुवल इताक, और वो आजाद करना है, यानी आका के आजाद करने से वो खियार इत्क साबित हुआ है। फयुअतबरु फीहि अल-मजलिसु, तो उसके अंदर मजलिस का एतबार किया जाएगा, वह मजलिस तक रहेगा। कमा फी खियार अल-मुखय्यरति, जैसे खियार मुखय्यरा है, भाई मुखय्यरा वो औरत जिसे खामन ने इख्तियार दे दिया, मियां और बीवी के दरमियान झगड़ा चल रहा है, तो खामंद उस बीवी से कहता है कि तुम्हें मेरी तरफ से इख्तियार है, मेरे साथ रहना चाहती हो या मुझसे जुदाई इख्तियार करना चाहती हो, तो खामंद ने बीवी को इख्तियार दे दिया, तो यह है मुखय्यरा, और यह इख्तियार किसने दिया, खामंद ने, लिहाजा यह इख्तियार मजलिस तक रहेगा। यह माना है कमा फी खियार मुखय्यरती, जैसे कि मुखय्यरा के खियार में होता है कि उसमें भी मजलिस का एतबार होता है। सुम मलफुर खतु बि खियार बुलूग लैसत बि तलाकिन, यहां से साहिब हिदाया ये बतलाएंगे कि ये जो खियार बुलूग या खियार इत्क की वजह से जुदाई आई है, निकाह फसख हुआ है, ये तलाक नहीं है। खियार बुलूग या खियार इत्क इस्तेमाल करते हुए निकाह को फसख कर दिया गया तो यह तलाक के हुक्म में नहीं। वजह यह कि खियार बुलूग लड़की को भी मिला था और लड़की तो तलाक की मालिक नहीं होती, वो भी निकाह फसख कर सकती है, लेकिन लेकिन उस वो तो तलाक की मालिक नहीं, लिहाजा ये फसख निकाह शुमार होगा, तलाक शुमार नहीं। इसी तरह बांदी को खियार इत्क मिला, वो निकाह फसख कर रही है, तो ये तलाक नहीं शुमार होगी क्योंकि ये मुअन्नस है और मुअन्नस तो तलाक की मालिक नहीं होती, खावन तलाक का मालिक होता है, लिहाजा इसको फसख निकाह शुमार करेंगे, तलाक शुमार नहीं करेंगे। तो कहते हैं सुम मलफुर कतु बि खियार बुलूग लैसत बि तलाकिन, फिर वो जुदाई जो खियार बुलूग की वजह से आई है वो तलाक नहीं है। लिअन्नहा तसिहु मिनल उनसा, इसलिए क्योंकि जुदाई औरत की यानी मुअन्नस की तरफ से भी सही है। वला तलाक इलैहा, हालांकि तलाक तो मुअन्नस के सुपुर्द नहीं है, तलाक का मालिक तो मर्द होता है, खावंद होता है। वकदा बि खियार इत्क लिमा बैन्ना, और इसी तरह खियार इत्क की वजह से भी यानी ये जुदाई तलाक नहीं है। लिमा बैन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि तलाक औरत की तरफ से नहीं हो सकती। बिखिलाफ इल मुखय्यरती, हां मुखय्यरा वो औरत जिसको खामन ने इख्तियार दिया था कि अगर मुझसे जुदाई इख्तियार करना चाहती है तो इख्तियार कर लो, तो यह औरत अगर जुदाई को इख्तियार करेगी तो फिर यह तलाक शुमार होगी। वजह यह कि इसको यह इख्तियार खावंद ने दिया है और खावंद तो तलाक का मालिक था, लिहाजा गोया उस खावंद ने ही इसको भी तलाक का मालिक बना दिया, उसी तलाक का इसको इख्तियार दे दिया। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मुखय्यरती, बखिलाफ मुखय्यरा के, लिअन्ना ज़ौजहु अल्लज़ी मल्लकहा, इसलिए क्योंकि इसका खावन जो है उसी ने इसको मालिक बनाया है। वह हुआ मालिकुन लित्तलाक़, और हाल यह है कि वो खावन खुद तलाक का मालिक है तो वो दूसरे को भी तलाक का मालिक बना सकता है। वह इन मात अहद हुमा कबल अल बुलूग वरिसहुल आखर, भाई यहां से यह बतलाएंगे कि ये सगीर या सगीरा जिनका निकाह करवाया है वली ने, अगर इनमें से किसी एक का इंतकाल होता है, सगीर या सगीरा का, या जो सगीर की बीवी है उसका इंतकाल होता है, या सगीरा का जो खावंद है उसका इंतकाल होता है, तो यानी मियां बीवी में से जिसका भी इंतकाल हो जाए ये दोनों एक दूसरे के वारिस बनेंगे। और अगर बालिग होने के बाद इंतकाल होता है, जुदाई से पहले, बेशक इन्होंने फसख का ऐलान कर दिया था लेकिन अभी काजी ने फैसला नहीं किया था कि उससे पहले इन दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाता है मियां बीवी में से, तो चूंकि इनके दरमियान अक़्द निकाह अभी भी मौजूद है, अभी तक जुदाई नहीं आई, तो ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे भाई। तो कहते हैं वह इन माता आहदुहुमा कबल अल बुलूग वरिसहुल आखर, अगर इन दोनों में से कोई एक मर गया बालिग होने से पहले तो वरिसहुल आखर, तो दूसरा उसका वारिस बनेगा। वकदा इदा माता बादल बुलूग कबल तफरीकी, और इसी तरह अगर ये बालिग होने के बाद मर गए कबल तफरीकी काजी की जुदाई करवाने से पहले तो भी ये वारिस बनेंगे। लिअन्ना असल अल अक्द सहीह, इसलिए क्योंकि असल अक्द तो सही सही है, वली ने जो आकद करवाया था वो सही है, वो तो नाफिज हो चुका है, उसके अहकाम भी उस पर लग चुके हैं, सिर्फ इनको फसख का इख्तियार दिया था शरीयत ने भाई। वल मिल्कु साबितु बिही कद इंतहा बिल मौती, और वो मिल्कियत जो साबित थी इस आकद की वजह से, तहकीक उसकी इंतहा हो गई मौत की वजह से। याद रखो मौत की वजह से आकदे निकाह अपने इख्तिताम तक पहुंच जाता है, यानी पक्का होकर खत्म होता है। यूं नहीं कहेंगे निकाह टूट गया, निकाह वैसे तो आम लफ्ज यही इस्तेमाल होता है निकाह टूट गया, लेकिन हकीकत में ये निकाह अपने इख्तिताम को पहुंच गया, अपने इख्तिताम तक पहुंचकर पक्का होकर खत्म हुआ, अपने इख्तिताम तक पहुंचकर खत्म हुआ है और पक्का होकर खत्म हुआ है। अब इसको तोड़ने की कोई सूरत नहीं जी। तोड़ना था तो मौत से पहले तोड़ सकते थे, लेकिन अब ये इख्तिताम तक पहुंचकर पक्का होकर खत्म हुआ है। बात समझ में आ गई, लिहाजा ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे, क्योंकि वली ने निकाह करवाया था और निकाह मुनाकिद हो गया था, और हत्ता के दोनों एक दूसरे के लिए हलाल थे भाई। सगीर के लिए उसकी बीवी हलाल हो गई थी और सगीरा के लिए उसका खावंद हलाल हो गया था, तो लिहाजा ये निकाह जो है ये पक्का होकर इख्तिताम तक पहुंचा है, तो ये दोनों एक दूसरे के वारिस बनेंगे भाई। बात समझ में आ गई। हां अलबत्ता वो जो खावंद को मिल्कियत हासिल थी सोहबत की बीवी पर, वो खत्म हो गई क्योंकि महल ही ना रहा, वो सगीरा का इंतकाल हो गया तो वो महल ही सोहबत वाला ना रहा, तो वो मिल्कियत जो है वो खत्म हो गई, लेकिन बहरहाल निकाह जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है पक्का होकर, तो ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे। बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं लिअन्न असल अल-अक्द सहीह, इसलिए क्योंकि असल अक्द सहीह है। वल मिल्कु साबितु बिही कद इंतहा बिल मौती, और वो मिल्कियत जो इसकी वजह से साबित थी, यानी वो जो खावंद के लिए सोहबत जायज थी, वो कद इंतहा वो इंतहा तक पहुंच गई बिल मौती, किसकी वजह से? मौत की वजह से। यानी अब चूंकि वो महल ही ना रहा, बीवी जिंदा ही ना रही, तो इसलिए सोहबत की भी सूरत ना रही भाई। तो वो मिल्कियत जो साबित थी इस निकाह की वजह से, यानी सोहबत करने वाली मिल्कियत, कद इंतहा बिल मौती, तहकीक वो मौत की वजह से अपने इख्तिताम को पहुंच गई। बिखिलाफी मुबाशरतिल फुजूली, बखिलाफ फुजूली के निकाह के। फुजूली मैंने बतलाया था कि गैर मुतअल्लिका आदमी, कि एक शख्स किसी का निकाह करवा देता है उसकी इजाजत के बगैर ही, तो यह शख्स जो है फुजूली कहलाएगा, यानी ये ना निकाह के अंदर असील है और ना वकील है, अपनी मर्जी से खुद ही किसी दूसरे का निकाह पढ़ा रहा है। और मैंने बताया था फुजूली जो आकद करता है वो मौकूफ रहता है उस शख्स की इजाजत पर जिसकी तरफ से आकद कर रहा है, अगर वो इजाजत देगा तो वो आकद नाफिज हो जाएगा, और अगर वो इजाजत नहीं देगा तो वह आकद बातिल हो जाएगा। अब सूरत यह, एक फुजूली ने किसी शख्स का निकाह करवा दिया, तो अब देखो वह निकाह मौकूफ है, मौकूफ है, तो अभी उसने आकर इजाजत नहीं ली थी कि उससे पहले ही वो जिनके दरमियान आकद करवाया था उन दोनों में से एक का इंतकाल हो गया, वो मर्द या औरत जिनके दरमियान फुजूली ने निकाह करवाया था उनसे अभी इजाजत नहीं ली थी कि उनमें से एक का इंतकाल हो गया, तो ये निकाह तो मौकूफ था, अभी नाफिज ही नहीं हुआ था, तो लिहाजा मौत से यह निकाह बातिल हो जाएगा। और ये जिनका निकाह करवाया था फुजूली ने, ये एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे क्योंकि निकाह नाफिज ही नहीं हुआ, जबकि वली ने जो निकाह करवाया था वो तो नाफिज हो गया था भाई। बात समझ में आ गई, तो वहां वो वारिस बनेंगे। कहते हैं बिखिलाफी मुबाशरतिल फुजूली, ये मुबाशरत का माना है किसी काम को खुद सर अंजाम देना। बिखिलाफी मुबाशरतिल फुजूली, ये बखिलाफ फुजूली के निकाह के सर अंजाम देने के, यानी वली ने जो निकाह सर अंजाम दिया था वहां तो वारिस बनेंगे, बेखिलाफी मुबाशरतिल फुजूली, फुजूली ने जो निकाह सर अंजाम दिया है उसके बरखिलाफ, यानी उसमें वो वारिस एक दूसरे के नहीं बनेंगे। इजा माता अहदुज़ौजैन क़ब्ल इजाजती, जब मियां बीवी में से कोई एक मर जाए इजाजत से पहले। लिअन्न निकाह सम्मता मौकूफ़ुन, इसलिए क्योंकि निकाह वहां पर मौकूफ है। फयबतुलु बिल मौती, तो मौत से बातिल हो जाएगा। ये सम्मा याद रखो, ये इसमें इशारा है बईद के लिए, और ये बगैर गोल ता के भी इस्तेमाल होता है और गोल ता के साथ भी, सम्मा बगैर गोल ता के और गोल ता के साथ भी, और इस सूरत में ता पर भी फतहा पढ़ेंगे। सम्मा ता और वक्फ करेंगे तो सम माह बई गोलता वक्फ की सूरत में हा बन जाती है। लिअन्ना निकाह सम माता मौकूफुन फयब तुलु बिल मौती, इसलिए क्योंकि निकाह वहां पर मौकूफ है, यानी जो फजूली ने सर अंजाम दिया था वहां निकाह मौकूफ है। फयब तुलु बिल मौती, तो वो मौत की वजह से निकाह बातिल हो जाएगा, वो तो नाफिज ही नहीं हुआ, तो लिहाजा एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। वहां होना नाफिजुन, और यहां पर जो वली ने निकाह करवाया था सगीर और सगीरा का, वो तो नाफिज है। फतकर्रा बिही, तो ये मौत की वजह से ये निकाह पक्का हो गया, यानी पक्का होकर इख्तिताम तक पहुंच गया, तो ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे। भाई आगे देखिए भाई, काला वला विलायत अली अब्दिन वला सगीर वला मजनून। भाई याद रखो, गुलाम मजनून या नाबालिग, इनको अपने ऊपर भी विलायत हासिल नहीं होती। गुलाम खुद अपना निकाह नहीं कर सकता, मजनून वो तो मजनून है, उसको तो निकाह की समझ ही नहीं है। नाबालिग वो भी कम अकल है, उसकी अकल कामिल नहीं। तो गुलाम मजनून और नाबालिग, इनको अपने ऊपर विलायत निकाह हासिल नहीं होती, ये अपना निकाह नहीं कर सकते, तो गैर पर भी इनको कभी विलायत निकाह नहीं मिलेगी, ये गैर का निकाह नहीं करवा सकते। बात समझ में आ गई, यानी विलायत इजबार इनको नहीं मिल सकती भाई सगीर या सगीरा पर। काला वला विलायत अली अब्दिन वला सगीर वला मजनूनी, और कोई विलायत नहीं है गुलाम के लिए और न सगीर के लिए और न मजनून के लिए। लिअन्नहु ला विलायत लहुम अला अनफुसिहिम, इसलिए क्योंकि इनको अपनी जात के ऊपर विलायत हासिल नहीं है। फअउला अल्ला यसबुता अला गैरिहिम, तो ज्यादा लायक है कि गैरों पर भी इनकी विलायत साबित न हो। वली अन्न हादिही विलायतुन नजरियतुन, और नीज इसलिए क्योंकि ये जो विलायत निकाह है, ये जो विलायत इजबार है, ये तो विलायतुन नजरियतुन, ये तो शफकत वाली विलायत है, शफकत की वजह से दी गई है। वला नजरा फी तफवीज इलाहा उलाई, और इनके हवाले करने में तो कोई शफकत नहीं, गुलाम के हवाले किसी की विलायत कर देना कि गुलाम को इस पर विलायत हासिल है, इस सगीर या सगीरा पर, या किसी सगीर को इन पर विलायत हासिल है, या किसी मजनून को इन पर विलायत हासिल है, तो इसमें तो कोई शफकत नहीं है, इसमें तो उनका नुकसान है भाई। लिहाजा चूंकि ये विलायत इजबार जो है इसकी बुनियाद शफकत पर है, और गुलाम सगीर और मजनून के हवाले करना इसमें कोई शफकत नहीं, लिहाजा गुलाम सगीर और मजनून को कभी किसी पर विलायत इजबार हासिल नहीं होगी। ये माना है वला नज़रा फी तफवीज़ इलाहा उलाई, और कोई शफकत नहीं है इनके सुपुर्द करने में। वला विलायत लिकाफिरिन अला मुस्लिमिन, और याद रखो काफिर को भी कभी मुसलमान पर विलायत इजबार हासिल नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई, लिहाजा बाप बेटा गैर मुस्लिम है लेकिन फिर बेटा मुसलमान हो गया, अभी बालिग भी नहीं हुआ वो मुसलमान हो गया, तो बाप को अब इस पर विलायत इजबार हासिल नहीं, बाप को इस पर विलायत इजबार हासिल नहीं, वो जबरदस्ती इसका निकाह नहीं करवा सकता। तो कहते हैं वला विलायत लिकाफिरिन अला मुस्लिमिन, और कोई विलायत नहीं है काफिर की अला मुस्लिमिन किसी मुसलमान पर। लिकौलिहि ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, और हरगिज अल्लाह नहीं बनाएंगे काफिरों के लिए मोमिनों पर सबीला, कोई रास्ता, अल्लाह हरगिज काफिरों के लिए मोमिनों पर रास्ता नहीं बनाएंगे, यानी अल्लाह कभी भी मोमिनों पर काफिरों को विलायत नहीं देंगे। मालूम हुआ ममलिकत इस्लामिया के अंदर कभी भी काफिर को मोमिन पर विलायत नहीं दी जा सकती। आगे देखिए, कहते हैं वलिहादा ला तुकबलु शहादतुहु अलैही, और इसीलिए काफिर की गवाही कबूल नहीं की जाती अलैही मुसलमान के खिलाफ, क्योंकि शहादत में भी गैर पर आपका कौल नाफिज हो जाता, जब आप किसी के खिलाफ गवाही देते हैं तो आपका कौल उस पर नाफिज हो जाता है, लिहाजा काफिर को मुसलमान के खिलाफ गवाही की इजाजत नहीं दी जाएगी, वरना तो काफिर का कौल मुसलमान पर नाफिज करना पड़ेगा, गोया आपने काफिर को मुसलमान पर विलायत दे दी भाई। ये माना है वलिहादा ला तुकबलु शहादतुहु अलैही, और इसीलिए काफिर की शहादत कबूल नहीं की जाएगी अलैही मुसलमान के खिलाफ। वला यतवारसानी, और ना बाहम ये एक दूसरे के वारिस होंगे। याद रखो काफिर मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता। दीन जब मुख्तलिफ हों, दीन जब मुख्तलिफ हों, यानी एक मुसलमान हो और एक काफिर, तो تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. آپ نے سراجی کے اندر پڑھا ہوگا کہ اختلاف دین یہ مانع بنتا ہے وارث بننے میں. لیکن یاد رکھو یہ اختلاف دین صرف مومن اور کافر کے درمیان ہے, مومن کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا. لیکن اگر دونوں کافر ہیں, چاہے پھر دونوں کا دین الگ الگ ہی کیوں نہ ہو, ایک عیسائی ہے اور ایک یہودی ہے, تو پھر یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے, اس کو اختلاف دین نہیں کہیں گے. وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ, کہ کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے بھائی, چاہے ان کا دین مختلف لیکن اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا, تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھائی. معلوم ہوا مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا. لہذا شریعت نے اجازت دی ہے کوئی مسلمان جو ہے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. تو یہ میاں بیوی تو ہوں گے لیکن ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. بیوی کا انتقال ہوا تو خاوند اس کا وارث نہیں بنے گا, اور خاوند کا انتقال ہوا تو بیوی وارث نہیں بنے گی, کیونکہ دین مختلف ہیں بھائی. یہ مانا ہے ولا یتوارثانی, اور یہ باہم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے یعنی مسلمان اور کافر. اما الکافر فیثبت له ولایۃ الانکاح علی ولده الکافر, ہاں کافر آدمی کو اپنے کافر بیٹے پر ولایت انکاح حاصل ہے, کیونکہ یہاں دونوں کیا ہیں کافر ہیں, تو اس کو ولایت انکاح حاصل ہوگی. یہ مانا ہے اما الکافر, باقی کافر جو ہے فیثبت له ولایۃ الانکاح, اس کو ولایت انکاح حاصل ہوگی, نکاح کروانے کی ولایت یعنی ولایت اجبار حاصل ہوگی. علی ولده الکافر, اپنے کافر بیٹے پر, لقوله تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے, والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض مددگار ہیں بعض کے, یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو یاد رکھو عوام کے سامنے یوں کبھی ترجمہ نہیں کرنا کہ والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض مددگار ہیں بعض کے. عوام کو یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا, بلکہ یہاں با محاورہ ترجمہ کرو, والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. با محاورہ ترجمہ کیا کرنا ہے, وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وَلِهَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ, اور اسی لیے کافر کی گواہی قبول کی جاتی ہے, عَلَيْهِ کافر کے خلاف, کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. وَيَجْرِي بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ, اور نیز ان کے درمیان توارث بھی جاری ہوتا ہے, ایک کافر دوسرے کافر کا وارث ہوتا ہے. آگے دیکھیے, ولغیر العصبات من الاقارب ولایۃ التزویج عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ, یہ وہ مسئلہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا, میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ولایت اجبار عصبات کو حاصل ہوتی ہے, اگر عصبات نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام کو یہ ولایت ملے گی, اور ذوی الارحام میں ساری رشتہ دار عورتیں بھی اس میں داخل ہو گئیں, اور وہ مرد بھی داخل ہو گئے جن کے ساتھ عورت کے واسطے سے رشتہ جڑ رہا ہے, تو ان کو بھی ولایت نکاح حاصل ہوگی. یہ یاد رکھو یہ امام صاحب کا مذہب ہے, جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, ولایت نکاح صرف عصبات کو حاصل ہے, ذوی الارحام کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. تو کہتے ہیں ولغیر العصبات من الاقارب, اور جو عصبات کے علاوہ اور رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی ثابت ہے ولایت التزویج, نکاح کروانے کی ولایت, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کے نزدیک. معناہ عند عدم العصبات, معنی یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں عصبات کے علاوہ ذوی الارحام کو بھی ولایت نکاح حاصل ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے جب عصبات نہ ہوں, اگر عصبات ہیں پھر تو انہی کو ولایت نکاح حاصل ہے, ذوی الارحام کو حاصل نہیں, لیکن اگر عصبات میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام کو ولایت نکاح حاصل ہوگی. تو کہتے ہیں معناہ عند عدم العصبات, معنی اس کا یہ ہے کہ جب عصبات نہ پائے جائیں. وہاد استحسان, اور یہ استحسان ہے یعنی استحسانن امام صاحب نے اجازت دی ہے. وقال محمد رحمہ اللہ, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تثبتو, کہ غیر عصبات کے لیے یہ ولایت نکاح ثابت نہیں. وہو القیاس, اور یہی قیاس ہے. वह हुआ रिवायत अन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और यही एक रिवायत है इमाम साहिब से भी, यानी इमाम साहब से एक रिवायत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के मजहब के मुताबिक भी आई है कि असाबात के अलावा ज़वील अरहाम को विलायत इनकाह हासिल नहीं है भाई। वकौल अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह फी ज़ालिका मुज़तरिबुन, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का कौल इस बारे में मुज़तरिब है, उसमें इज़तिराब है, यानी पूरी तरह पता नहीं कि वो किसके साथ हैं। बाज़ मकामात से अंदाजा होता है कि वह इमाम साहिब के साथ हैं, और बाज़ मकामात से अंदाजा होता है कि वह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं। तो कहते हैं वकौल अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह फी ज़ालिका मुज़तरिबुन, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का कौल इस बारे में मुज़तरिब है। वल अशहरु अन्नहु मा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और ज्यादा मशहूर यह है कि इमाम अबू यूसुफ वो इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह के साथ हैं भाई। लहुमा जी, अब दलील आ गई साहिबैन की। इमाम अबू यूसुफ के बारे में भी ज्यादा मशहूर यही है कि वो इमाम मोहम्मद के साथ हैं, तो साहिबैन एक तरफ हो गए और इमाम साहिब एक तरफ। लहुमा, साहिबैन की दलील जो है, मा रवैना, वो हदीस है जो हमने रिवायत कर दी। भाई ये गुज़श्ता से पैवस्ता सबक में आया था, हदीस जिक्र की थी साहिब हिदाया ने, अन निकाहु इलल असबात, कि निकाह जो है वो असाबात के हवाले है, निकाह असाबात के सुपुर्द है। और मैंने बताया बाज रिवायतों में आया है अल इनकाह इलल असाबात, के निकाह करवाना जो है वो असाबात के सुपुर्द है। तो साहिबैन की ये दलील है, वो फरमाते हैं देखो इस हदीस में निकाह को सिर्फ असाबात के हवाले करने का जिक्र है, यहां ज़वील अरहाम का जिक्र नहीं, लिहाजा ज़वील अरहाम को यह इख्तियार नहीं मिलेगा। तो कहते हैं लहुमा मा रवैना, साहिबैन की दलील वो हदीस है जो हमने रिवायत कर दी। वली अन्नल विलायत, नीस अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं कि कियास भी साहिबैन की ताइद करता है। तो साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो विलायत दी है शरीयत ने वली को, ये इसलिए दी है ताकि वो अपने खानदान की हिफाजत करे कि गैर कुफ की तरफ उसकी निस्बत न हो, गैर कुफ की तरफ उसकी निस्बत ना हो। देखो वली निकाह करवाएगा तो वो हमेशा कुफ का ख्याल रखेगा, वो अपने बराबर के लोगों में निकाह करवाएगा, वो अपने से कम तर लोगों के अंदर निकाह करवाने को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कल को लोग ताना देंगे कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम लोगों की बेटियां तो छोटे छोटे खानदानों में उनकी शादी तुमने करवाई है। तो लिहाजा इसलिए वली जो है वो गैर कुफ की तरफ निस्बत करने से अपने खानदान को बचाना चाहता है, और ये बचाएगा कौन, असाबात ही बचाएंगे, जाहिर सी बात है ये उन्हीं के हवाले होगा भाई। तो अपने खानदान को कम दर्जे के लोगों से बचाना ये असाबात का काम होता है, ये ज़वील अरहाम का काम नहीं भाई। वजह ये है कि जो असाबात जितने जिक्र हुए ये बाप की तरफ से रिश्तेदार हैं
जी,
ये किसकी तरफ से रिश्तेदार हैं, बाप की तरफ से, और नसब का एतबार बाप की तरफ से होता है। तो लड़की ये बाप के खानदान की शुमार होती है, मां के खानदान की शुमार नहीं। तो ज़वील अरहाम वो तो औरतें हैं, या औरतों की तरफ से जो रिश्तेदार हैं वो हैं, तो उनका तो खानदान अलग होगा और इनका खानदान अलग होगा। तो और अपने खानदान की हिफाजत ये खुद असाबाद करेंगे, ज़वील अरहाम का क्या काम है कि वो दूसरों के खानदान की गैर कुफ की तरफ निस्बत से हिफाजत करें। तो गैर कुफ से अपने खानदान की हिफाजत करना ये किसके जिम्मे होता है, असाबात के, क्योंकि ये वो बाप के खानदान वाले हैं और ये अपने खानदान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन्नल विलायत इन नमा तस्बुतु सौनन लिल कराबती, और कहते हैं ये विलायत इसलिए साबित है सौनन लिल कराबती, ताकि रिश्तेदारी को बचाया जाए, अन निस्बती गैर इल कुफ इलैहा, इस बात से कि गैर कुफ की निस्बत हो रिश्तेदारी की तरफ, कि गैर कुफ आपके रिश्तेदार हैं। व इलल असाबात इस सियानतु, और ये बचाना असाबात के हवाले है, उनके सुपुर्द है, वो अपने खानदान का ख्याल रखते हैं कि गैर कुफ की तरफ कहीं निस्बत न हो जाए भाई। बात समझ में आ गई। क्या दलील हुई साहिबैन की, साहिबैन की एक दलील तो वो हदीस है अन्निकाह इलल असाबाती, और दूसरी दलील जो है कियास है कि देखो ये जो असाबात को विलायत सिर्फ इसलिए दी गई है कि ये गैर कुफ की तरफ निस्बत करने से अपने खानदान की हिफाजत करें, और ये हिफाजत किसके सुपुर्द होगी, असबात ही के सुपुर्द है, जविल अरहाम के सुपुर्द नहीं है भाई। वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला और इमाम साहिब की दलील यह है कि अन्नल विलायत नजरियत, उनकी ये जो विलायत निकाह दी गई है यानी विलायत इजबार नजरियत, ये शफकत वाली है। ये क्यों दी गई है? शफकत की वजह से दी गई है। वन नजरु यतहक्ककु बितफ़वीज़ी इला मन हुवा अल-मुख्तस्सु बिल-क़राबति अल-बा'इसति अल-शफ़क़ा। इमाम साहब फरमाते हैं कि भाई ये जो विलायत इजबार दी गई है इसकी बुनियाद शफकत पर है, और असबात के अलावा और भी तो रिश्तेदार हैं, जब वो रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारी शफकत की तरफ बुलाती है, तो लिहाजा जब उनमें भी शफकत मौजूद है तो उनको भी विलायत इजबार मिलेगी। जैसे मां है भाई, असबात के बाद दर्जा मां का है, अब देखो मां की तो सबसे ज्यादा शफकत है, तो लिहाजा उसको भी विलायत इजबार मिलनी चाहिए। मां है, बहने हैं, दादी है, नानी है, नाना है जो इस किसी औरत के जरिए रिश्ता है, ये सारे ये भी तो सब शफकत करने वाले हैं, तो लिहाजा इनको भी विलायत इजबार मिलनी चाहिए। ये किसका मजहब है? इमाम साहिब का। तो देखिए दोबारा वो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला अन अल विलायत नजरियतुन, इमाम साहिब की दलील यह है कि ये जो विलायत इजबार है ये शफकत वाली है। वन नजरु यतहक्ककु बितफ़वीज़ी, और ये नजर ये शफकत पाई जाएगी बितफ़वीज़ी सुपुर्द करने से, इला मन हुवल मुख्तस्सु बिल-क़राबति, सुपुर्द करने से उस शख्स के जो खास है क़राबत के साथ। इस विलायत की बुनियाद शफकत पर है, और जब हम ये विलायत उस शख्स को दे देंगे जो रिश्तेदार है तो भी शफकत पाई जा रही है, क्योंकि रिश्तेदारी भी किस तरफ दावत देती है? शफकत की तरफ। तर्जमा देख लीजिए, यहां जरा तर्जमा मुश्किल है। वन नजरु यतहक्ककु, और शफकत पाई जाएगी बितफ़वीज़ी इला मन हुवल मुख्तस्सु बिल-क़राबति, सुपुर्द करने के उस शख्स के जो खास है रिश्तेदारी के साथ क़राबत के साथ। अल-बा'इसति अल-शफ़क़ा, वो रिश्तेदारी जो उभारने वाली है शफकत पर, वो रिश्तेदारी जो शफकत पर उभारने वाली है, उस रिश्तेदारी के साथ जो भी शख्स खास है जिसमें भी इस किस्म की रिश्तेदारी पाई जाती है उसके सुपुर्द कर दिया जाए विलायत निकाह को, तो इसमें भी शफकत ही शफकत है। बात समझ में आ गई। यहां एतराज होता है, एतराज ये कि साहिबैन ने तो दलील के तौर पर हदीस जिक्र की और इमाम साहिब कियास पेश फरमा रहे हैं, अकली दलील है भाई कि चूंकि बाकियों में भी शफकत होती है लिहाजा बाकियों को भी विलायत मिलनी चाहिए। हालांकि हदीस में क्या आया था? अन निकाह इलल असबात, निकाह तो असबात के सुपुर्द है, तो ये तो इमाम साहब हदीस के मुखालिफ जा रहे हैं। जवाब के नहीं, इमाम साहब हदीस के मुखालिफ नहीं जा रहे, हदीस के अंदर निकाह को असबात के सुपुर्द किया गया है उस वक्त जब असबात मौजूद हों, तो जब असबात मौजूद हो उस वक्त तो इमाम साहब भी इसी के कायल हैं कि असबात ही को विलायत मिलेगी ज़बिल अरहाम को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक शख्स के असबात मौजूद ही नहीं है तो फिर उसके बारे में तो हदीस खामोश है, उसके बारे में तो हदीस में कोई जिक्र नहीं। हदीस में तो वह सूरत जिक्र है जब असबात मौजूद हैं तो असबात ही के सुपुर्द होगा निकाह, लेकिन जब असबात मौजूद नहीं वो सूरत तो हदीस के अंदर जिक्र नहीं, तो इमाम साहब तो वो सूरत जिक्र कर रहे हैं जब असबात कोई भी ना हो और ज़विल अरहाम मौजूद हैं तो फिर ज़विल अरहाम को ये हक मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, यहां इस्तेहसान का लफ्ज आया, ये अच्छी तरह समझ लें भाई, ये बार बार आगे आएगा, मैं भी कोशिश करूंगा इसका तकरार करवाता रहूं ताकि आपके जहन में बात अच्छी तरह जम जाए। याद रखो, इस्तेहसान कहते हैं वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील जो कियास के मुकाबले में आए, चाहे कुरान हो, चाहे हदीस हो, चाहे इजमा हो। तवज्जो है, वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील जो किसके मुकाबले में आए, कियास के मुकाबले में आए, यानी दूसरी तरफ कियास भी मौजूद हो, तो ये जो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील है, चाहे कुरान है यानी कुरान की कोई आयत है, या कोई हदीस है, या इजमाए उम्मत है, इनको इस्तेहसान कहेंगे। भाई आप मुझे बताइए, एक तरफ आयत के अंदर एक बात है और कियास दूसरी बात का तकाजा कर रहा है, आप किस पर अमल करेंगे? आयत पर अमल करेंगे तो यह आयत, यह तो मुत्तफकुन अलैह दलील है, तो यह मुत्तफकुन अलैह दलील जिसके मुकाबले में कियास मौजूद हो, इस मुत्तफकुन अलैह दलील को इस्तेहसान कहते हैं। तो आप आयत पर अमल कर रहे हैं, आपसे पूछें आपकी दलील क्या है, आप कहेंगे मेरी दलील इस्तेहसान है। या आप हदीस पेश करते हैं, अब एक तरफ कियास है और एक तरफ हदीस है, तो जाहिर सी बात है हदीस पर अमल किया जाएगा, तो ये जो हदीस है इसको इस्तेहसान कहा जाएगा। या एक तरफ कियास है और एक तरफ इजमाए उम्मत है भाई, तो इजमा जो है उसको इस्तेहसान कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस्तेहसान किसे कहते हैं, वो मुत्तफकुन अलैह दलील जो जिसके मुकाबले में कियास मौजूद हो, तो वो मुत्तफकुन अलैह दलील चाहे कुरान हो उसको इस्तेहसान कहेंगे, या हदीस हो उसको भी इस्तेहसान कहेंगे, या इजमा हो उसको भी इस्तेहसान कहेंगे भाई। लेकिन याद रखो ज्यादातर जो इस्तेहसान है वो कियास खफी के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? कियास खफी। याद रखो कियास दो किस्म पर है, एक कियास जली और एक कियास खफी। कियास जली वो है, जली का माना जाहिर, यानी जो बात जाहिर हो, अकल फौरन वहां तक पहुंच जाए कि ऐसा होना चाहिए, तो इसको कियास जली कहते हैं। और कियास खफी वो भी अकली दलील होती है, अकल हमें बतलाती है, लेकिन वहां जरा गौर ज्यादा करना पड़ता है, बात जरा गहरी होती है, बात जरा पोशीदा होती है। तो कियास दो किस्म पर, या कियास जली होगा या कियास खफी होगा। अगर मसलन अकली दलील है, बात बिल्कुल जाहिर है, तो उसको कियास जली कहेंगे, और अगर जरा गहरी बात है, गौर व फिक्र करना पड़ता है, फिर ही दिमाग वहां तक पहुंचता है, तो इसको कियास खफी कहते हैं। तो याद रखो इस्तेहसान मुत्तफकुन अलैह दलील को कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेहसान का इतलाक कियास खफी पर होता है, यानी जो गहरा कियास हो। लेकिन कियास खफी को भी इस्तेहसान तब कहेंगे जब उसके मुकाबले में कियास जली हो। अगर इस कियास खफी के मुकाबले में कियास जली मौजूद नहीं है, तो फिर जितना मर्जी गहरा कियास हो उसको कियास ही कहेंगे, उसको इस्तेहसान नहीं कहेंगे। तो कियास खफी को भी कब इस्तेहसान कहेंगे, जब उसके मुकाबले में कियास जली मौजूद हो। अगर कियास जली उसके मुकाबले में नहीं, तो फिर जितना मर्जी गहरा कियास हो उसको कियास ही कहेंगे, इस्तेहसान नहीं कहेंगे। और याद रखो, याद रखो ये जो इस्तेहसान है ये पसंदीदा होता है, इसी पर हमेशा फतवा होता है। चुनांचे उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ 20-22 मसाइल ऐसे हैं जहां कियास पर फतवा है, बाकी हर जगह इस्तेहसान पर फतवा होता है। सिर्फ 20-22 मकामात हैं जहां कियास जली पर फतवा है, वरना हर जगह इस्तेहसान पर फतवा होता है। और इस्तेहसान को इस्तेहसान इसलिए कहते हैं कि यह पसंदीदा होता है, मुस्तहसन का माना है पसंदीदा, तो यह इस्तेहसान पसंदीदा होता है। वजह यह कि इसमें लोगों के लिए आसानी होती है, इस्तेहसान में लोगों के लिए आसानी होती है, और जाहिर सी बात है जिस चीज में लोगों के लिए आसानी हो वो पसंदीदा है भाई। मसलन कुएं का मसला आपने पढ़ा होगा कि अगर जंगल के अंदर कुआं है और उसकी कोई मुंडेर वगैरह नहीं है, और उसमें 2-4 मेंगनियां अगर गिर गईं, तो फिर वो पानी नजस नहीं होगा भाई, वो पानी नजस नहीं होगा। और कियास तो ये तकाजा करता है कि मेंगनियां तो नजस है, नजासत पानी में थोड़ी सी भी गिर जाए पानी क्या हो जाता है, नजस, तो पानी को नजस करार देना चाहिए। लेकिन यहां इस्तेहसान पर अमल किया गया और इस पानी को भी पाक करार दिया गया। और मुझे बताइए किसमें आसानी है, पानी को नजस करार देने में इन लोगों के लिए आसानी है, या पानी को पाक करार देने में? पाक करार देने में। तो इसलिए इसको इस्तेहसान कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो वहां जरा गहरी दलील होगी, लेकिन उसमें लोगों के लिए आसानी है, तो उसको इस्तेहसान कहेंगे भाई। तो यहां पर भी देखो इमाम साहब की दलील क्या थी कि इस विलायत की बुनियाद शफकत पर है, और यह शफकत जो है ज़वील अरहाम में भी पाई जाती है, लिहाजा उनको भी इख्तियार होना चाहिए। और साहिबैन क्या फरमाते हैं कि यह विलायत सिर्फ असबात के सुपुर्द है, इसलिए क्योंकि इस विलायत का मकसद खानदान को गैर कुफ्स की तरफ निस्बत करने से बचाना है भाई, और यह काम असबात ही करते हैं और कोई नहीं करता, लिहाजा यह असबात के सुपुर्द होनी चाहिए। तो देखो कियास तो साहिबैन की ताईद कर रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में कियास खफी امام صاحب کی تائید کر رہا ہے اور قیاس خفی کو ترجیح دی گئی کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے آسانی ہے اور پسندیدہ ہے تو یہ استحسان ہے. تو دیکھو قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے ومن لا ولی لها یعنی العصبۃ من جهۃ القرابۃ اذا زوجها مولاها الذی اعتقها جاز لانه آخر العصبات. یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اگر ایک صغیر یا صغیرہ ہے اور اس کے عصبات میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں لیکن معتق زندہ ہے. معتق کیا ہے؟ مثلا یہ صغیر یا صغیرہ جو ہے غلام یا باندی تھی بھئی اور پھر آقا نے اس کو آزاد کر دیا بچپن میں ہی. تو یہ یاد رکھو یہ جو معتق ہے معتق یہ اس کو عصبہ سببی کہتے ہیں. باقی عصبات جو رشتہ دار ہیں وہ عصبہ نسبی ہیں, نسب کے اعتبار سے عصبات ہیں. اور یہ جو معتق ہوتا ہے آزاد کرنے والا یہ ابھی عصبہ ہے لیکن یہ عصبہ سببی ہے. یعنی یہ اعتاق جو اس نے کیا یہ جو آزاد کیا ہے اس اعتبار سے یہ عصبہ ہے. توجہ ہے بھئی. دیکھو باپ دادا وغیرہ یہ کیا ہیں؟ انسان کے عصبات ہیں. اور عصبات جیسے یہ باپ دادا کی وجہ سے انسان کو زندگی ملی. باپ دادا کو اللہ نے بیٹوں پوتوں کی زندگی کا سبب بنایا ہے تو بیٹوں پوتوں کو زندگی کس کی وجہ سے ملی؟ باپ دادا کی وجہ سے. تو گویا باپ دادا ان کو زندگی دینے والے ہیں اس لیے وہ ان کے وارث بنتے ہیں. اسی طرح یہ جو معتق ہے جس نے آزاد کیا ہے کسی شخص کو اس نے بھی گویا اس شخص کو نئی زندگی دے دی. وجہ یہ کہ غلام تو بالکل بے جان چیزوں کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو خریدا جاتا ہے بیچا جاتا ہے اس کو تصرفات کا حق نہیں ہوتا لیکن جب غلام کو آزادی ملی تو اس کو تمام تصرفات کا حق مل گیا گویا اس کو ایک نئی زندگی مل گئی. تو جیسے باپ دادا زندگی کا سبب بنتے تھے تو وہ وارث بنتے تھے تو یہ جو معتق ہے یہ بھی زندگی کا سبب بنا لہذا یہ بھی وارث بنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور اسی طرح اس کو ولایت اجبار بھی ملے گی. لیکن یاد رکھنا عصبات میں پہلا درجہ عصبہ نسبی کا ہے. عصبہ نسبی جب نسب والے عصبات موجود ہوں تو ولایت اجبار انہی کو ملے گی. لیکن اگر عصبہ نسبی میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں اگر معتق موجود ہے تو اس کو ولایت اجبار مل جائے گی اور وہ جہاں نکاح کروائے گا نکاح منعقد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی کہتے ہیں ومن لا ولی لہا اور جس شخص کا کوئی ولی نہیں ہے یعنی جس صغیر یا صغیرہ کا کوئی ولی نہیں ہے یعنی العصبۃ من جهۃ القرابۃ یعنی قرابت کی جانب سے کوئی عصبہ نہیں ہے کوئی نسبی عصبہ نہیں ہے تو اذا زوجها مولاها الذی اعتقها تو جب اس کا نکاح کروا دے اس کا وہ آقا جس نے اس کو آزاد کیا تھا اس صغیر یا صغیرہ کو جاز تو یہ جائز ہے لانه آخر العصبات کیونکہ یہ آخری عصبہ ہے. میں نے بتایا یہ اس کو بھی عصبہ کہتے ہیں البتہ باقی عصبہ نسبی ہیں اور یہ عصبہ سببی ہے اور اس کا درجہ ان کے بعد ہوتا ہے اسی لیے کہا لانه آخر العصبات کیونکہ یہ عصبات میں سے آخری ہے بھائی. وَإِذَا عَدَمَ الْأَوْلِيَاءُ اور اگر کسی شخص کے اولیاء نہیں ہیں یعنی عصبہ نسبی بھی نہیں ہے عصبہ سببی بھی نہیں ہے ذوی الارحام بھی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں اس کے نکاح کی ولایت جو ہے بادشاہ یا حاکم کے پاس ہوگی. بادشاہ یا حاکم جہاں ان کا نکاح کروانا چاہے کر سکتا ہے. کہتے ہیں وَإِذَا عَدَمَ الْأَوْلِيَاءُ اور جب اولیاء نہ ہوں یعنی صغیر اور صغیرہ کے فَالْوِلَايَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ تو یہ ولایت اجبار جو ہے امام اور حاکم کے سپرد ہوگی. امام سے مراد ہے خلیفہ اور بادشاہ اور حاکم سے مراد ہے گورنر. بادشاہ ہوتا تھا پورے ملک کا اور پھر ہر ہر صوبے یا ہر ہر شہر کا وہ الگ گورنر مقرر کرتا تھا تو بادشاہ یا گورنر جو ہیں ان کو ولایت اجبار حاصل ہوگی بھائی. تو میں نے آپ کو بتایا حاکم سے مراد ہے گورنر بھائی لیکن بعض علماء نے لکھا کہ حاکم سے مراد قاضی ہے. حاکم سے کون مراد ہے؟ قاضی ہے یعنی فیصلہ کرنے والا. تو قاضی کو بھی ولایت انکاح ملے گی لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ بادشاہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہو. तो कहते हैं वह इदा आदमल अवलिया उ, और जब अवलिया मादूम हो जाए, फल विलायत तो इलल इमाम वल हाकिमी, तो विलायत जो है इमाम और हाकिम के सुपुर्द है, लिकौलिही अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस फरमान मुबारक के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस सुल्तान वली युमन ला वली यलहू, के बादशाह वली है, मन ला वली यलहू, जिसका और कोई वली नहीं, जिसका और कोई मददगार नहीं, बादशाह उसका मददगार है, उसका वली है। आगे देखिए फैदा गाबल वली युल अकरब गैबतम मुनक़तियातन जाज़ लिमन हुआ अब आदुमीन हु अन युज़व्विजा। सूरत मसला ये कि एक सगीर या सगीरा है और उसके लिए बड़ा अच्छा रिश्ता मिल रहा है इस वक्त, लेकिन वो जो वली है जिसको विलायत इजबार हासिल है यानी बाप, वो इस वक्त गायब है, कहीं गया हुआ है और पता ही नहीं चल रहा कहां गया हुआ है भाई, और अब हम उसका इंतजार करते हैं तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, तो क्या उसके बाद वाले वली को इख्तियार है, क्या वो अब निकाह करवा सकता है इस सगीर या सगीरा का? तो कहते हैं हां, जब वली खुद गायब है और उससे राबते की कोई सूरत नहीं, उससे उसकी राय लेने की कोई सूरत नहीं है, तो फिर जो दूर वाला वली है वो उसको विलायत मिल जाएगी, वो निकाह करवा सकता है। तो कहते हैं फैदा गाबल वली युल अकरबु, जब सबसे करीबी वली गायब हो जाए, गैबतम मुनकतियातन, और कैसा गायब हो, गैबत मुनकतिया यानी ऐसी गैबत जिसमें उसका पता ही नहीं चल रहा, ऐसा गायब है, आगे इसकी तफसील भी बयान करेंगे साहिब हिदाया भाई। कहते हैं फैदा गाबल वली युल अकरबु गैबतम मुनकतियातन, जब सबसे करीबी वली गायब हो जाए, गैबतम मुनकतियातन, ऐसी गैबत के साथ जो मुनकतिया है यानी जिसमें उसका पता ही नहीं चल सकता, जाज अलीमन हुआ अब आदू मीन हूं, तो जायज है उस वली के लिए जो इस वली से ज्यादा दूर है यानी दूसरे दर्जे वाला है, अं युज़व वीजा के वो निकाह करवा दे। वकाल जुफर रहमहुल्लाह, इधर देखिए इमाम जुफर फरमाते हैं नहीं, जब करीबी वली गायब है तो दूर वाले वली को निकाह करवाने की इजाजत नहीं। वजह यह कि यह जो विलायत इजबार करीबी वली को मिली है यह उसका हक है, और हकदार जब गायब हो तो इससे उसका कोई हक जाया नहीं होता भाई, किसी और को यह हक नहीं मिल सकता, लिहाजा दूर वाला वली निकाह नहीं करवा सकता। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्लाह ला यजूज, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह जायज नहीं है, लिअन्न विलायत अल अक्रबी काइमतुन, इसलिए क्योंकि करीबी वली जो है उसकी विलायत मौजूद है, वो खुद मौजूद है तो उसको उसकी विलायत भी मौजूद है, वो मर जाएगा तो फिर उसकी विलायत भी खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं लिअन्न विलायत अल अक्रबी काइमतुन, इसलिए क्योंकि सबसे करीबी वली जो है उसकी विलायत जो है कायम है, लिअन्नहा तस्बुतु हक्कन लहू, इसलिए क्योंकि ये विलायत उस करीबी वली के लिए उसका हक होकर साबित हुई है, सियानतन लिलकराबती, रिश्तेदारी को बचाने के लिए, रिश्तेदारी को गैर कुफ से बचाने के लिए ये उसका हक होकर साबित हुई, ये उसका हक है भाई, और गायब होने से किसी का हक बातिल नहीं होता भाई। फला तब तुलू भी गैबती ही, लिहाजा उसके गायब होने से उसकी यह विलायत बातिल नहीं होगी। वह लिहाजा लवजव वजह है सु हुआ जाजा, और इसीलिए लवजव वजह, वो जो वली गायब है अगर वो इस सगीर या सगीरा का निकाह करवा दे, जहां कहीं भी गया हुआ है वहीं उसने इसका क्या करवा दिया, निकाह करवा दिया, तो देखो ये निकाह भी जायज है, ये निकाह जायज है, मालूम हुआ अभी भी उसी को विलायत हासिल है, लिहाजा कोई और उसकी जगह निकाह नहीं करवा सकता। वह लिहाजा लवजह, और इसीलिए अगर उस वली ने वो जो गायब है उसने इसका निकाह करवा दिया, हैसु हुआ जहां कहीं भी वो हुआ, ये हैसु जरफिया है जगह के लिए है, जहां भी वो हुआ जाजा तो जायज है। वला विलायत लिल अबादी मा विलायती ही, और दूर वाले के लिए विलायत नहीं होगी, मा विलायती ही इसकी विलायत के साथ, यानी करीब वाले की विलायत के होते हुए दूर वाले को विलायत हासिल नहीं होगी। वलना, और हमारी दलील ये है, अन्नहादी ही विलायतुन नजरियतुन, कि ये जो विलायत इजबार मिली है इस शख्स को, ये विलायतुन नजरियतुन, ये शफकत वाली विलायत है। वलैसा मिनन नजरी तफवीजु इला मन ला युन्तफ़ऊ बिरायिही, वलैसा मिनन नजरी, और ये शफकत में से नहीं है, अत्तफवीज़ के सुपुर्द कर दिया जाए, इला मन, उस शख्स के, ला युन्तफ़ऊ बिरायिही, जिसकी राय से नफा नहीं उठाया जा सकता। भाई देखो ना, वली अकरब तो गायब है, उसका पता ही नहीं चल रहा, और इधर ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, ये इतना ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। तो लिहाजा हमारी दलील चल रही है, हमने कहा ये जो विलायत इजबार शरीयत ने दी है ये शफकत की वजह से दी है। अब रिश्ता हाथ से निकल रहा है और फिर भी विलायत उसी के पास रहे जिसकी राय से हम फायदा ही नहीं उठा सकते, किसी काम की नहीं है उसकी राय क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है, तवज्जो है, वो मौजूद नहीं है, उसकी राय का पता ही नहीं चल सकता। तो लिहाजा जिसकी राय से फायदा नहीं उठाया जा सकता, राय को उसके सुपुर्द करना इसमें कोई शफकत नहीं है, बल्कि शफकत का तकाजा तो यह है कि जो मौजूद है अब उसको यह विलायत दे दी जाए। भाई यह माना है वलैस मिनन नजरी, और शफकत में से नहीं है अत तफवीजु के सुपुर्द कर दिया जाए इस विलायत को इला मन ला युन्तफ़ऊ बिरायही, उस शख्स के कि जिसकी राय से फायदा नहीं उठाया जा सकता। फफवज़नाहु इलल अबादी, तो हमने इसको सुपुर्द कर दिया इलल अबादी दूर वाले के। वह हुआ मुकद्दमुन अला सुल्तानी, और ये दूर वाला जो है ये बादशाह पर मुकद्दम है। भाई याद रखो ये दरअसल रद्द कर रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर वली ये अकरब गायब है तो फिर बादशाह को इख्तियार मिल जाएगा, बादशाह और हाकिम को। हम कहते हैं कि ये जो वली अबअद है ये बादशाह पर मुकद्दम है, हत्ता कि वली अकरब जब मरता है तो फिर किसका दर्जा होता है? वली अबअद का दर्जा होता है, बादशाह का दर्जा नहीं होता। मालूम हो ये बादशाह पर मुकद्दम है, लिहाजा इसको विलायत मिलनी चाहिए। ये माना है फवज़नाहु इलल अबादी, तो हमने ये वली अबाद है उसके सुपुर्द कर दिया इस नजर को। वह हुआ मुकद्दमुन अला सुल्तानी, और हाल यह है कि ये वली अबाद बादशाह पर मुकद्दम होता है। कमा इदा मातल अकरब, जैसे कि वली अकरब मर जाए तो फिर ये वली अबाद वली होता है। वलौजा वजहा हैसु हुआ। अच्छा, इमाम जुफर रहमला फरमाते थे कि आप देखते नहीं कि वली अबाद अगरचे गायब है लेकिन फिर भी विलायत उसी के पास है, वो जहां कहीं है अगर वहां भी निकाह करवा देगा तो निकाह हो जाएगा। तो अब उसका जवाब देने लगे हैं कि वो जहां है उसी जगह निकाह करवा देगा तो निकाह हो जाएगा। हम कहते हैं हमें आपकी ये बात तस्लीम नहीं। दो जवाब देंगे, एक मनई एक तस्लीमी। पहला जवाब ये, हमें आपकी ये बात तस्लीम ही नहीं है कि वली अकरब जहां कहीं भी हो वो वहां उसका निकाह करवाएगा तो जायज हो जाएगा। हमें आपकी ये बात तस्लीम नहीं, और अगर हम आपकी ये बात तस्लीम कर भी लें तो ज्यादा से ज्यादा हम ये कहेंगे कि अब वली अकरब और वली अबाद दोनों बराबर हो चुके हैं, तो इधर वली अबाद करवा देगा तो इधर भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा, और उधर अगर वली अकरब ने जहां कहीं है वहीं उसने निकाह करवा दिया है तो वह भी मुनाकिद हो जाएगा। तो फिर एतबार किसका? जाहिर सी बात है जिसने पहले करवाया है, जिसने पहले, तो मालूम हो उस अकरब को भी विलायत है और इस अबाद को भी विलायत है। बात समझ में आई? फिर समझो, इमाम जुफर फरमाते थे कि वली अकरब को जो विलायत मिली है ये उसका हक है, ये उसी का हक है, वो जहां कहीं भी हो, ये जहां कहीं भी हो ये इस सगीर या सगीरा का निकाह करवा सकता है। तो जब ये इसका हक है तो वली अबाद को यह हक नहीं मिलेगा। तो उसके दो जवाब दिए, एक तो जवाब मनाई और एक तस्लीमी। पहला जवाब मनाई कि हमें आपकी यह बात तस्लीम ही नहीं है कि जहां कहीं भी हो यह निकाह करवा सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरा जवाब कि अगर आपकी बात तस्लीम कर ली जाए कि हां यह जहां कहीं भी हो निकाह करवा सकता है, तो भी हम कहते हैं कि अब वली अबाद भी इसके बराबर का हो चुका है, ये भी निकाह करवाएगा तो हो जाएगा, और वो भी जहां कहीं है निकाह करवाएगा तो हो जाएगा, जिसने करवा दिया पहले वो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वलौजा वजहा हैसु हुआ फीही, और अगर निकाह करवा दिया वली अकरब ने हैसु हुआ फीही जिस जगह में भी वो हुआ मुनिया, तो ये बात ममनुअ है, हमें तस्लीम नहीं है कि ऐसा नहीं है। वह बाद तस्लीमी, और अगर हम ये तस्लीम भी कर लें तो हम कहते हैं वह बाद तस्लीमी नकूल, और तस्लीम करने के बाद हम कहते हैं लिल अबादी बुअदुल कराबती व कुर्बु तदबीरी व लिल अकरबी अक्सुहू। मैंने बताया कि जब वली अकरब गैबत मुनकतिया के साथ गायब है और इधर रिश्ता हाथ से निकल रहा है तो वली अकरब और वली अबाद बराबर हो गए। वो बराबर किस तरह हुए वो साहिब हिदाया अब बयान करेंगे। कहते हैं देखो वली अकरब उसका रिश्तेदारी में कुर्ब है और अबअद का रिश्तेदारी में बौद है, तो अकरब का दर्जा आला, अबअद का दर्जा उससे कम। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो अबअद की राय से हम इस वक्त फायदा उठा सकते हैं और अकरब जो गायब है उसकी राय से हम फायदा नहीं उठा सकते, वो मौजूद ही नहीं है, ये रिश्ता हाथ से निकल रहा है। तो जो अकरब है रिश्ते में बेशक करीब है लेकिन राय के एतबार से वो बईद है, और अबअद जो है वो रिश्ते में बेशक दूर है लेकिन राय के एतबार से करीब है, लिहाजा दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो अब वली अबअद वली अकरब के बराबर है, अब वो भी निकाह करवा सकता है। बात समझ में आ गई। ये माना है वबाद तस्लीमी नकूलू, और तस्लीम करने के बाद हम कहते हैं लिल अबादी बोदुल कराबती, कि वली अबाद जो है उसके लिए कराबत की दूरी है, रिश्ता उसका जरा दूर का है, लेकिन वह कुर्ब तदबीरी, लेकिन उसकी तदबीर और उसकी राय क्या है, करीब है। वलिल अकरब अक्सुहू, और अकरब वली के लिए अक्सुहू इसका बरअक्स है, रिश्ता उसका करीब का है लेकिन राय उसकी दूर की है, राय तक हम पहुंच नहीं सकते। फनुज़िला मंज़िलता वलीयैन मुतसावियैन, तो उतार दिया गया इन दोनों को दो बराबर वलियों के दर्जे में, इन दोनों वली अकरब और अबअद को दो बराबर वलियों के दर्जे में उतार लिया गया। फअय्युहुमा अक़दा, बस इन दोनों में से जिसने भी अक़द करवा दिया नफाज़ा, वो अक़द नाफिज हो जाएगा। वला युरद्दु, और उसको रद्द नहीं किया जाएगा। याद रखो मैंने आपको विलायतों के दर्जे बतलाए थे, सबसे पहला दर्जा सगीर और सगीरा में बाप, फिर दादा, फिर परदादा, उसके बाद भाई, इस सगीर या सगीरा का भाई अगर वो बालिग है, और फिर उस भाई के नीचे मुजक्कर औलाद, फिर उसके बाद इसका चचा, और फिर चचा के नीचे मुजक्कर औलाद भाई। तो इनमें तरतीब है, जो सबसे करीबी होगा उसको विलायत का हक होगा, उसके होते हुए किसी और को निकाह करवाने की इजाजत नहीं। अगर कोई और निकाह करवा भी देगा तो ये इस वली अकरब की इजाजत पर मौकूफ रहेगा, ये इजाजत देगा तो वह नाफिज होगा, ये इजाजत नहीं देगा तो नाफिज नहीं होगा। तो लिहाजा और किसी को निकाह करवाने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहां मसला जिक्र हो रहा है जब वली अकरब गायब है, क्या है, गायब है, तो फिर अब वली अबाद को विलायत मिलेगी भाई। बात समझ में आ गई। और यह भी याद रखना अगर एक ही दर्जे वाले दो या ज्यादा अफराद हैं, मसलन सगीर का बाप भी जिंदा नहीं, दादा पर दादा भी जिंदा नहीं, हां इसके बालिग भाई हैं, चार पांच भाई हैं भाई, सब हकीकी भाई हैं, तो सब एक ही दर्जे वाले हैं, लिहाजा इनमें से हर एक को विलायत हासिल है, जो पहले करवा देगा निकाह बस वो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और अगर दो या तीन ने इकट्ठे एक ही वक्त में निकाह करवाया है तो फिर किसी एक का भी मुनाकिद नहीं होगा। आगे देखिए वल गैबतुल मुनक़तियातु अन यकूना फी बलदिन ला तसिलु इलैहिल क़वाफिलु फिस सनति इल्ला मर्रतन। अब यहां से गैबत मुनक़तिया का बयान कर रहे हैं, ऊपर तो आया था अगर वली गायब है गैबत मुनक़तिया के साथ तो फिर वली अबअद भी निकाह करवा सकता है। अब यह गैबत मुनक़तिया किसे कहते हैं उसकी तफसील बयान करने लगे हैं। याद रखो साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं कि गैबत मुनक़तिया यह है कि वली अकरब ऐसी जगह पर है जहां साल में सिर्फ एक दफा काफिले जाते हैं। अब देखो ये इतनी दूर है जहां साल में एक दफा काफिले जाते हैं, तो अब इसकी राय और मशवरे का पता नहीं चल सकता, तो अब इधर वली अबाद निकाह करवा सकता है। लेकिन आम उलमा फरमाते हैं कि नहीं, इसमें अदना मुद्दत सफर का एतबार किया जाएगा, कम से कम मुद्दत सफर कितनी है, तीन दिन। अगर वली अकरब तीन दिन की मसाफत पर या इससे ज्यादा है तो बस इधर रिश्ता हाथ से निकलने का खतरा है, तो वली अबाद निकाह करवा सकता है। जबकि बाज उलमा ने लिखा कि गैबत मुनक़तिया यह है कि वली ऐसा गायब है कि हम उसकी राय का इंतजार करें तो कुफ हाथ से निकल जाएगा, बेशक उसी शहर के अंदर ही क्यों ना हो, उसी शहर में है लेकिन वो शहर में कभी चला जाता है, कदीम जमाने में तो कोई राबते की भी सूरत नहीं होती थी, शहर के अंदर ही किस जगह गया होगा लेकिन वो कई कई दिन गुजारने के बाद आता है, तो अब शहर के अंदर बेशक गायब है लेकिन इधर रिश्ता हाथ से निकल रहा है, वो एक दो या तीन दिन तक तो इंतजार करेंगे, इससे ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, तो फिर हम इतना इंतजार कर लेंगे और फिर जब उस वक्त तक उसका पता नहीं चला तो फिर वली अबाद ही निकाह करवा देगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल गैबतुल मुनकतिया तो अन यकून फी बलदिन, और गैबत मुनकतिया यह है कि वली अकरब ऐसे शहर में हो, ला तसिलु इलैहिल कवाफिलु, कि वहां काफिले न पहुंचते हों, फिस सनति साल में, इल्ला मर्रतन मगर एक मरतबा। भाई कदीम जमाने में तो सफर बड़ा मुश्किल था, आज तो आपका जब इरादा बनता है आप आराम से सफर पर निकल जाते हैं, गाड़ियां वगैरह आराम से मिल जाती हैं। कदीम जमाने में इंतजार करना पड़ता था, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होते चले जाते और एक काफिला जब बन जाता तो फिर उसके बाद सफर पर निकलते थे। भाई तो कहते हैं कि गैबत मुनकतिया यह है कि वो वली अकरब ऐसे शहर में हो जहां साल में काफिले सिर्फ एक ही मरतबा पहुंचते हैं, वह अख्तियार उल्कुदूरी, ये और ये साहिब कुदूरी का इख्तियार है। ये गैबत मुनकतिया की तारीफ किसने की? साहिब कुदूरी ने, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं। वकील, और कहा गया है अदना मुद्दत सफरी, कि सफर की कम से कम जो मुद्दत है वो है गैबत मुनकतिया, यानी कम से कम 3 दिन के मुसाफत पर हो। वली अकरब लिअन्नहु ला निहायत लि अक्साहू, इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सफर की तो कोई इंतहा नहीं है, तो आखिरी हद की इंतहा जब नहीं है तो अदना हद का एतबार करेंगे। भाई لأنه لا نهاية لأقصاه, इसलिए क्योंकि सफर की जो आखिरी हद है उसकी तो कोई इंतहा नहीं है। वह इख्तियार बाज़ المتأخرين, और ये इख्तियार है बाज़ المتأخرين का, उन्होंने इस कौल को इख्तियार किया कि यह है गैबत मुनकतिया। वकील, और कहा गया है इदा कान बिहालिन, कि गैबत मुनकतिया यह है कि जब वली अकरब ऐसी हालत पर हो, यफूतुल कुफ़ कि कुफ फौत हो जाएगा यानी हाथ से निकल जाएगा, बिस्तितलाई रायही उसकी राय का पता चलाने में। वली अकरब ऐसे हाल पर हो कि अगर हम उसकी राय की जस्तजू और कोशिश शुरू करें तो इतनी देर में ये कुफ जो है ये हाथ से निकल जाएगा, तो ये गैबत मुनकतिया है। तो कहते हैं वकील, और कहा गया है इदा कान बिहालिन, जब वली अकरब ऐसी हालत पर हो कि यफूतुल कुफ़ बिस्तितलाई रायही कि उसकी राय का पता चलाने में कुफ फौत हो जाता है, वहादा अकरब इलल फिक्ह, साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि ये आखिरी कौल जो है ये फिका के ज्यादा करीब है, यानी फिक्ह ही उसूलों के ज्यादा करीब है। किसके? फिक्हे उसूलों के ज्यादा करीब है। लिअन्नहु ला नज़र फी इबका विलायतिहि हीन इज़िन, इसलिए क्योंकि फिर कोई शफकत नहीं है उसकी विलायत को बाकी रखने में। यह विलायत किस लिए दी गई थी? शफकत की वजह से, और अब इधर कुफ हाथ से निकल रहा है तो अब भी यह विलायत उस वली अकरब को जो गायब है उसी को देने में कोई शफकत नहीं है, लिहाजा अब यह विलायत वली अबाद को मिल जाएगी। ये माना है। फिर देख लीजिए वहादा अकरब इलल फिक्ही, और ये जो राय है ये कौल जो है ये फिका के यानी फिक्ही उसूलों के ज्यादा करीब है, फिक्ही दलाइल के ज्यादा करीब है। लिअन्नहु ला नज़रा फी इबका विलायतिही हीन इज़िन, इसलिए क्योंकि फिर उस वक्त जब कुफ फौत हो रहा है तो उस वक्त फिर उस वली अकरब की विलायत को बाकी रखने में कोई शफकत नहीं है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए व ईजा जता माफिल मजनूनती अबू हा व बनू हा, भाई सूरत मसला ये, एक मजनूना है और उसका बेटा भी मौजूद है और बालिग बेटा और बाप भी मौजूद है, तो अब किसको विलायत इजबार हासिल होगी? तो जवाब याद रखना, मैंने आपको तरतीब बतलाई थी कि अव्वल दर्जे वाले औलाद हैं, लिहाजा जब बेटा मौजूद है तो बेटे को विलायत हासिल होगी। और मजनूना कहा इसलिए क्योंकि अगर आकिला हो, आकिला पर तो किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं, वो तो फिर अपने बाप या बेटे में से एक को वकील बना देगी कि मेरा फलां जगह निकाह करवा दो। तो कहते हैं वईदा जता माफिल मजनूनती अबूहा व बनूहा, और जब जमा हो जाए मजनूना के बारे में उसका बाप और उसका बेटा, फल वली युफी इनका हिहा बनूहा, तो इसका निकाह करवाने में इसका वली जो है वो इसका बेटा है। फी कौली अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक। तो जिक्र किया मजनूना का यह मसला है भाई, और या फिर यूं कहें कि यह मजनूना से यहां मातूहा मुराद है। मातूह और मातूहा उस शख्स को कहते हैं जो इंतहाई कम अकल और नासमझ हो, जो मजनून तो नहीं, पागल तो नहीं, लेकिन नासमझी और कम अकली में वो मजनूनों के साथ मुशाबहत रखता है, तो इसको मातूह कहते हैं, तो वो मुराद है भाई। تو شیخین فرماتے ہیں بیٹا جو ہے اس کا ولی ہے. وقال محمد رحمہ اللہ ابوہا, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ ولی ہے. لأنه اوفر شفقتا من الابن, امام محمد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ولایت اجبار ہے اس کی بنیاد شفقت پر ہے, اور باپ کی شفقت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے, لہذا باپ کو یہ ولایت حاصل ہوگی. لیکن شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ ولایت بیٹے کو حاصل ہوگی. کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابوہا, اس کا باپ جو ہے وہ اس کا ولی ہوگا. لأنہ اوفر شفقتا من الابن, اس لیے کیونکہ باپ جو ہے وہ زیادہ شفقت والا ہے بیٹے کے مقابلے میں. ولہما شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے, ان الابن هو المقدم, کہ بیٹا جو ہے وہ مقدم ہے. فی العصوبتی, عصبہ ہونے میں, عصبات میں پہلا درجہ کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے. تو شیخین فرماتے ہیں ان الابن هو المقدم فی العصوبتی, کہ بیٹا جو ہے وہ مقدم ہے عصبہ ہونے میں. وہذہ الولایۃ مبنیۃ علیہا, اور اس ولایت کی بنیاد جو ہے عصوبت پر ہے, عصبہ ہونے پر ہے. ولا معتبر بزیادۃ الشفقتی, اور زیادہ شفقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کاب الام مع بعض العصبات, جیسے کہ نانا جو ہے بعض عصبات کے ساتھ. امام محمد فرماتے ہیں باپ کی شفقت زیادہ ہے لہذا اس کو ولایت ہوگی. شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں, یہاں شفقت کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ اس ولایت کی بنیاد عصبہ ہونے پر ہے, اور عصبہ جو ہوگا وہ مقدم ہوگا. چنانچہ اسی لیے اگر ایک صغیر یا صغیرہ ہے, اس کا نانا موجود ہے, اور عصبات میں سے صرف چچا کا بیٹا موجود ہے. کون موجود ہے؟ چچا کا بیٹا. اب دیکھو شفقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نانا کی شفقت زیادہ ہے, لیکن شریعت نے نانا کو حق نہیں دیا, اس نانا کو شریعت نے ولایت اجبار نہیں دی, بلکہ چچا کے بیٹے کو ولایت اجبار دی ہے. معلوم ہوا اس ولایت کا دار و مدار عصبہ ہونے پر ہے, شفقت پر نہیں. لہذا اس لیے عصبہ ہونے میں بیٹا مقدم ہے, تو بیٹے کو ہی ولایت ان کا حاصل ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی ہے. مانا ہے ولا معتبر بزیادت شفقتی, اور شفقت کے زیادہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کاب الامی, جیسے کہ نانا ہے. مع بعض العصباتی, بعض عصبات کے ساتھ. تو عصبات کو ترجیح ہوتی ہے, نانا کو ترجیح نہیں ہوتی. واللہ اعلم, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا. چلیے بس, بہذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.